हाथ में और दाहिने हाथ में मनुष्यों के भेद होता है शक्ति में। भगवान में दाएं बाएं का भेद नहीं है, उनको बाएं दाएं का कोई भेद नहीं है। तो बामे न करें ना, भगवान मानो दिखा रहे हैं कि तो कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। कहते हैं कोई काम करते हैं तो कहते हैं अरे वो क्या कठिन, वो तो बाएं हाथ का खेल है। तो बामे न करें ना, बाएं कर से सलीलम लीला पूर्वक आसानी से उद्धृतम उठा लिए, जब बाएं हाथ से धनुष को उठाए और धनुष को ऐसे जमीन पर नवा करके बाएं हाथ से ही पर तांत चढ़ा दिए, प्रत्यंचा चढ़ा दिए, और चढ़ा करके फिर प्रत्यंचा को ऐसे खींचे चढ़ से धनुष टूट गया। भगवान में तो अनंत बल है। पश्यताम निर्णाम, सब देख रहे थे, मना कर रहे थे, उनके देखते देखते भगवान प्रत्यंचा चढ़ाए और विकृष्य खींच करके प्रबभंज प्रकर्षण बभंज तोड़ दिए। कहां मध्यतः, मध्य में तोड़े, धनुष मध्य में बहुत मोटा होता है और कड़ा होता है, किनारे नहीं तोड़े, बीच में मध्यतः प्रबभंज बीच में तोड़ दिए। कैसे तोड़े, जथेक्षु दंडम मदकर उरुक्रम, जैसे इक्षु दंड को, ईख के दंडे को, गन्ने को कोई मतवाला हाथी तोड़ दे, तो हाथी को ये गन्ना तोड़ने में क्या मेहनत पड़ेगी। जो बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देता है उसको एक गन्ना तोड़ने में, इक्षु दंड तोड़ने में क्या कठिनाई होगी। इस तरह भगवान ने तोड़ दिया, जैसे लगा कि एक ईख तोड़ रहा है और वो भी हाथी ईख तोड़ रहा है। हाथी जैसा शरीर भगवान का नहीं हो गया था, बड़ा उतना ही देखने में बच्चा थे, लेकिन फिर भी सुगमता से तोड़ दिया, अनायास तोड़ दिए। इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे हाथी ईख तोड़ दे वैसे तोड़ दिए। क्यों, क्योंकि उरुक्रम, उरुक्रम है, उरव क्रम जस स उरुक्रम, क्रम का अर्थ होता है पाद विच्छेद और क्रम का अर्थ होता है लीला वैभव ऐश्वर्य, जिनका बहुत बड़ा ऐश्वर्य। उरुक्रम आप लोग पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में, भगवान का वैभव, जस्यैक निःश्वसित काल मथावलंब्य जीवंत लोम बिलजा जगदंड नाथा, विष्णुर महान सह्यजस्य कला विशेष गोविंदमाद पुरुषोत्तम हम भजाम। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ पद पर श्री ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी की आयु है 1,54,40,000,000,000 वर्ष। अब तो इधर मिलियन बिलियन सब चलता है लेकिन हमारे भारतीय गणना में ऐसे बहुत, इससे बहुत अधिक गणना है सूक्ष्म, 100 से तो जनरली जानते हैं, 100, सहस्त्र, लक्ष, कोटि और अर्बुद, खरबुद, नील, पद्म, संख, महापद्म, ऐसे कुछ संख्या गिनते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु 1,54,40,000,000,000 वर्ष की, करोड़ में तो कोई है ही नहीं, करोड़ में गिनती नहीं है ब्रह्मा जी के जन्म वर्ष की, इतने वर्ष जीवित रहते। और ब्रह्मा जी के जीवन काल में कितने कितने मनु बदलते हैं, उनके एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। एक दिन में बदलते हैं ना, एक दिन में 14 मनु बदलते हैं और एक मनु का शासन काल रहता है 71 चतुर्युग और एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्ष का, 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। और ऐसा 71 चतुर्युग बीतता है तब एक मनु महाराज रिटायर होते हैं और जब 14 मनु बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। बीच में सृष्टि सस्पेंड रहती। और इस तरह से ब्रह्मा जी का 360 दिन का एक वर्ष होता है, तो कितने मनु बदलेंगे वर्ष में जोड़ लीजिए। और इस तरह से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीवित होते हैं। तो ब्रह्मा जी एक नील 54,40,000 वर्ष जीवित रहते, हम लोगों ने जोड़ा था एक बार। इतनी लंबी भगवान की सांस होती है, जीवंत लोम बिलजा जगदंड नाथ, जगदंड नाथ ब्रह्मांड नाथ श्री ब्रह्मा जी आदि, भगवान महाविष्णु के एक सांस तक ही ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो भगवान जब सांस बाहर करते हैं तो उतना ही तक वे जीवित रहते हैं, जीवित में तो प्रकट, और जब ही सांस भीतर करते हैं ब्रह्मा आदि सब भगवान में प्रवेश करते हैं। जस एक निःश्वसित कालम अथावलम जीवंत लोम बिलजा, और वे भगवान महाविष्णु भगवान गोविंद के एक कला विशेष है, बहुत ही थोड़ी शक्ति के प्रकाशन जो भगवान है, लेकिन उसमें बहुत शक्ति प्रकाशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कला विशेष है। गोविंद माद पुरुषम तम हम भजान, ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं। तो ऐसे गोविंद एक धनुष को तोड़ दिए तो कौन आश्चर्य की बात, वहां के लिए भारी आश्चर्य हो गया मथुरा में कि कृष्ण नाम का लड़का धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने की इनको आदत है, जनकपुर में भी तोड़ दिए धनुष तोड़ते रहते या धनुष तोड़, वहां तो तोड़े सीता के साथ विवाह करने के लिए, और यहां कंस का वध करने के लिए। एक वर प्राप्त था कंस को कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तुम नहीं मारे जाओगे, तो वो सोचता था कि इसको कौन तोड़ेगा, और इसलिए धनुष की सुरक्षा रखा था चारों तरफ से, धनुष की रक्षा सिपाही सब कुछ। लेकिन भगवान पहले जाकर के देवता के वरदान को तोड़ना चाहते तो तोड़ दिए। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम्रोदसी दिशः पूरयामास यम श्रुत्वा कंसः त्राशमुपागमत्। जब धनुष तोड़ा भगवान कृष्ण ने, तो उस धनुष टूटने का शब्द पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, इतना जोर की आवाज। वो वज्र से भी कठोर धनुष रहा, तोड़ने पर बहुत भयंकर आवाज हुई, दसों दिशाओं में आकाश में पाताल में सब जगह वो शब्द भर गया। और उस भयंकर शब्द को मथुरा में सुनकर कंस त्रासम उपागमत, उसको तो बहुत अधिक त्रास हुआ, कंस को बहुत अधिक त्रास हो गया, और वो समझ गया कि धनुष टूट गया। और तो त्रास उसको हो गया क्योंकि उसको पता था कि धनुष टूटने के बाद ही उसकी मृत्यु है। बहुत भारी त्रास हुआ, भय से कांपने लगा। जहां था वो होश में ना, उपकार थे अधिक किए ना, अधिक त्रास को प्राप्त हुआ, बहुत त्रास हुआ। और इसके बाद अब वो भेजा सेना, जाओ 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 कृष्ण को मारो। वहां जो पहले रह रहे थे रक्षिणा, तद रक्षिण सानुचरा, भारत में आज भी पुलिस को आरक्षी कहते हैं। आरक्षी का अर्थ है जो बढ़िया से रक्षा करे, जो जनता की रक्षा करे उनको आरक्षी कहते हैं, इधर तो पुलिस कहते हैं। पुलिस वास्तव में जनता की रक्षा करने के लिए है। तो कंस के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे ये सब आरक्षी अपने अपने अनुचरों के साथ कुपित हो गए धनुष तोड़ने से, और कृष्ण को पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। धनुष तो तोड़ दिए कृष्ण, और जब धनुष तोड़े उसके बाद कृष्ण भागना चाहते थे यज्ञशाला से बाहर, क्योंकि ये सब उनको भी पता था कि मैं अपराध किया हूं। भागना चाहते थे तो सब चारों ओर से घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए। वो तो मरना चाहते थे, अब क्या किया कहा जाए, मरने की उनकी मरने का समय आ गया था, नहीं तो चुपचाप हट गए होते तो भगवान नहीं मारे होते। तो कृष्ण को सब लोग घेर लिए और बलराम जी को भी। जब घेर लिए चारों तरफ से तो अब तक तो भगवान के हाथ में कोई आयुध नहीं था। श्री बलराम जी ने एक टुकड़ा लिया धनुष का और भगवान, और उसी धनुष के टुकड़ा से सबको मार मार कर वहीं समाप्त कर बस एक एक बार मारना था, कोई ज्यादा नहीं। इतना कड़ा प्रहार होता था कि वहीं पर बैठ जाते, फिर उठे नहीं, सब मर गए। और जब उसके द्वारा भेजी हुई सेना आई, वे निकल रहे थे यज्ञशाला के मुख से, तो द्वार पर ही सबको मारते गए और सब मर गए, तब निकले गए। इस तरह से भगवान की लीला। सबसे पहला आयुध मथुरा में भगवान ने लिया धनुष का टुकड़ा। कंस के धनुष से ही कंस के अनुचरों का वध कर दिया, क्योंकि यहां पर लिखा गया है श्री बलराम जी के लिए बल और कृष्ण के लिए केशव। तो जो ब्रह्मा शिव आदि के भी नियामक हैं और जो साक्षात बल हैं, उनके लिए क्या कहना। दोनों भाई धनुष उठा एक एक हाथ से धनुष उठाकर मारते थे, ऐसे दो हाथ से नहीं दो हाथ, और बाएं हाथ से बलराम जी धनुष लेकर ऐसे मार रहे थे। और भगवान जिसको मारे वो तो ऐसे संकल्प मात्र से ही मर जाएगा, फिर धनुष मारने से क्यों नहीं मारेगा। सबको मार दिया। प्रथम दिन मथुरा में जब भगवान प्रवेश किए तो शाम के समय की घटना है, और उसके दूसरे दिन में कंस का वध कर देंगे। ऐसे बहुत क्विक काम हो रहा है, जल्दी काम हो रहा है, धनुष टूट गया। बलम च कंस प्रहितम हत्वा शाला मुखात ततः निष्क्रम्य चेरतुर हृष्टो निरीक्ष पुरुषम तदः। बलम च कंस प्रहितम, कंस के द्वारा भेजा गया बल मतलब सेना का टुकड़ा, वो लोग आए तो शाला मुखात यज्ञशाला के गेट पर ही कृष्ण बलराम सबको मारते गए। एक एक बार मारना था बस, और ऐसा नहीं केवल हाथ में लेकर ही मारते। कृष्ण और बलराम दोनों ऐसे धनुष के टुकड़े को मारते थे तो एक बार में हजारों लोग मर जाते थे, फेंकते थे, सब मर गए। हजारों रक्षक वहां धराशायी हो गए। और इसके बाद दोनों भाई निकले यज्ञशाला से और चेरा तो फिर घूमने लगे मथुरा में। इधर अभी बहुत लंबा बड़ा शहर था इसलिए और देखने लगे, और हृष्ट प्रसन्न थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। इतने लोगों को मारकर और प्रसन्नता से घूम रहे, निर्भय घूम रहे, अब उनके सामने कौन आएगा। जो लोग सुनते होंगे देखते होंगे कि इतने लोग मारे गए, तो अब वो तो अपने अपने घरों में भाग गए होंगे दूसरे सिपाही, अब कोई सामने नहीं है। तो खूब आनंद पूर्वक हृष्ट प्रसन्न थे, निरीक्ष पुरुष संपदा, मथुरा का वैभव देख करके दोनों भाई बहुत प्रसन्न थे। वास्तव में यह कृष्ण का घर है, कृष्ण का नगर है, कंस तो ऐसे ही अवैध दखल किया था, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था। पूर्व संपदा निरीक्ष मथुरा की संपत्ति को देखकर भगवान बहुत हृष्ट हुए और बहुत देर घूमे। तयोस्तदद्भुतम वीरजम निशाम्य पूर्वाशिनः तेजः प्रागल्भ्य रूपं च मे निरे विबुधोत्तमौ। उन दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर मथुरा के सभी लोग यही मानने लगे कि कृष्ण और बलराम विबुधोत्तम हैं, देवोत्तम हैं, एक विष्णु हैं और एक शिव है, निश्चित ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य ऐसा पराक्रम कर ही नहीं सकता। अच्छा, बल भी देख रहे थे और दूसरा तेज, शरीर में तेज प्रागल्भ और सुंदरता, ये देखकर सब लोग यही कहते थे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव मनुष्य रूप में आए हैं। विविधोत्तम मानते थे मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, देवता कर सकते हैं। तो सब लोग यही घर घर में चर्चा करते थे, कृष्ण और बलराम विष्णु और शिव देवताओं में श्रेष्ठ, आपस में यही चर्चा कर रहे हैं। तयोर्विचरतो स्वयं आदित्योस्तमुपेयान, दोनों भाई जब इस तरह से विचार विहरण कर रहे थे अपने सखाओं के साथ मथुरा में, घूमते घूमते आदित्य अस्त मुपेवान, आदित्य अस्त हो गए, अदिति के पुत्र विवस्वान जी अस्त हो गए, सूर्य अस्त हो गए। कहने का भगवान सूर्य जो जो सूर्य लोक के मालिक हैं इस समय, उनका नाम है विवस्वान। तो विवस्वान माता आदिति के पुत्र हैं, इसलिए इनको आदित्य कहा जाता है, आदित्य। हमने सुना है गांव में स्त्रियां कहती, हे आदित्य भगवान, सूर्य के तरफ आंचल फैला कर वर मांगती है अपने परिवार के सुख के लिए, आदित्य। तो आदित्य अस्त हो गए, तो भगवान अब रात्रि में नहीं घूम रहे थे। ये फागुन का महीना था और यज्ञ होने वाला था शिवरात्रि के दिन, मतलब कल शिवरात्रि पड़ेगी। शिवरात्रि के दिन कंस मथुरा वास लिया और नित्य लीला में प्रवेश किया और शिवरात्रि के दिन वो शिव जी का धनुष था, इसलिए वो यज्ञ रखा गया और इसी कारण से बहुत लोग आए थे देखने के लिए। तो उस समय सूर्य अस्त हुआ होगा लगभग 6 बजे। सूर्य के अस्त होने पर दोनों भाई फिर अपने आवास स्थान पर लौट आए। कहां? नगर से बाहर एक बगीचे में कई बैलगाड़ी खड़े किए थे उन्होंने, बैलगाड़ी खड़ा करके चारों तरफ से, और उसमें बीच में कोई बेड कपड़ा कंबल डाले होंगे वहीं पर लेते हुए सब, क्योंकि शहर में उस समय इस तरह से मोटल होटल की व्यवस्था नहीं थी कि कहीं ठहरे भाड़ा पर ले और ये करें। लौट गया स्थान, एक तरफ तो भगवान बिल्कुल सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, दूसरी तरफ परम ईश्वर जैसी लीला करके आए आए दोनों। अब सुखदेव गोस्वामी को याद आ रही है ब्रज के गोपियों की, गोपियों ने जो जो कहा था सब सत्य हुआ। सुखदेव गोस्वामी कुछ ईर्ष्या से कथा कह रहे हैं। गोपियों ने कहा था विरह गीत में कि निश्चित ही विधाता मथुरा की स्त्रियों के अनुकूल हो गया, हम लोग जिस रूप को देखती थी उस रूप को मथुरा की स्त्रियां देखेंगी, उनका दिन बहुत अच्छा होगा। तो सही में वो अच्छा हो गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक में, गोप्यो मुकुंद विगमे विरहातुराया आशा सपासि सरिता मधुपुर भुवन संपश्यताम पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी हित्वेतरानुभजताश्चकमेयनं श्रीः। मुकुंद विगमे विरहातुराया, श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा प्रस्थान के समय उनके विरह में व्याकुल हुई गोपियों ने जो जो कहा था मथुरा की स्त्रियों के विषय में सब सत्य हुए। यही कहा था कि मथुरा की स्त्रियों का भाग्योदय हो गया, वे श्री कृष्ण के रूप सुधा को पिएंगी, तृप्त होंगी, उन्होंने बहुत बहुत तप किया होगा, अब हमारा दुर्दिन आ गया, हमारा दुर्भाग्य आ गया, हम कृष्ण के विरह में मरेंगे, हमारा भाग्य मथुरा की नारियों ने छीन लिया, ये किया। तो वास्तव में जो जो गोपियों ने कहा था वो सब सत्य हुआ। पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी, समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण के शरीर के सौंदर्य को देख देख कर तृप्त हो रहे, सब देख रहे थे, खासकर स्त्रियां। लक्ष्मी जी की सभी आराधना करते हैं, लेकिन वह लक्ष्मी जी जिनके चरण का आश्रय ली है, ऐसे पुरुष को मथुरा के लोग देख रहे थे, धन्य हो रहे थे। तब श्री कृष्ण बलराम आए अपने डेरा पर, हम लोग डेरा कहते हैं, कहीं टेम्पररी आवास बनाते हैं एक दो दिन या दो चार महीने के लिए, तो डेरा का तो आए अवनिपांग्री जुगल भुक्तवा क्षीरोपसेचनम उशतुस्ताम सुखम रात्रि ज्ञातवा कंस चिकीर्षितम। दोनों भाई आए तो सबसे पहले वे चरण धोए, अवनिक्त अंग्री जुगल, अवनिक्त का अर्थ धोए, चरण धोए। प्रतिदिन माँ यशोदा धोती थी चरण, दोनों भाइयों में गाय चरा कर आते थे, लेकिन आज स्वयं धोए। अब थोड़ा बड़े हो गए, कितना दिन माँ करती रहेगी अब अपने दोनों चरण कमल को धोए, क्योंकि बहुत दूर घूमे थे तो धोए, चरण धो करके। और इसके बाद वे फ्रेश हुए, अपना मुख धोए, आंख धोए और खाए। यह वर्णन है कि भगवान बाजार में केवल पान भर खाए थे, और चीज बहुत खाए नहीं, भूख लगी थी। यहां आकर के क्षीरोपसेचन, दूध में पकाया गया पदार्थ खाया, दूसरा नहीं। और ऐसा था कि माँ यशोदा ने एक बैलगाड़ी पर चूल्हा रखा था, और चूल्हा पर बरसी, आप लोग समझते हैं मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें आग रहती है, उसी आग पर उसने दूध डाला था, गर्म दूध रखा था, और दूध आ रहा था धीरे धीरे। और ये कहा गया था कृष्ण बलराम को ये दूध पिलाना है, और उसी में उसने चावल डाल दिया था, चावल भी पक रहा है। तो आए तो यहां पर कुकिंग नहीं किए शाम को, जो ब्रज से ही पका पकाया आया था, तो दूध में पकाया गया पदार्थ मतलब खीर भगवान खाए रात को, और दोनों भाई सुखम सुसुपत, सुख से सो गए, आराम से सो गए। ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर भगवान अब कोई पलंग आदि नहीं लाए हैं, कपड़ा जो भी लाए होंगे घर से, कंबल या रजाई, तो सब बिछाए सो गए, सुखम से सो गए, सुख से सो गए। जो आदमी हजारों आदमियों का वध किया, जो व्यक्ति हजारों मनुष्यों का वध किया, वो सुख से सो रहा, इस चीज भगवान को क्या गम है। और वो भी ज्ञातवा कंस चिकीर्षितम, कंस की चिकित्सा को पूरा पूरा सुने, पूछे क्या उसका इरादा है, क्या है ये है, तो भगवान को तो पूरा पता लगा कि वो मारना चाहता है, ऐसे करना चाहता है, आगे ये करेगा। अब जिसका धनुष तोड़ा गया है, जिसके हजारों लोग मारे गए हैं, और उस नगर का वो राजा है, क्या एक्शन लेगा इन गोपों के प्रति, ये सहज समझा जा सकता है। लेकिन दोनों बिल्कुल सुखम से सुपद, सुख से सो गए, थोड़ा भी भय नहीं हुआ, लेटे और नींद आ गई, इसको भगवान कहते हैं। दूसरा आदमी तो सोचता है भागे अब मथुरा छोड़ करके, कहीं वन में इधर उधर जाए, अब तो राजा पता लगाएगा और वध करेगा। कंस चिकीर्षितम ज्ञात्वा सुखम सुसुपतु, कंस के अभिप्राय को आगे वो क्या कर रहा है सब पता करके फिर भी सो गए नंद महाराज रात भर नहीं सोए। नंद महाराज और जो बड़े बड़े गोप थे, वे लोग श्री कृष्ण और बलराम की रक्षा के लिए रात भर नहीं सोए। क्योंकि वो लोग भी सुनते थे कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, नंद महाराज मानते थे कि भगवान नारायण इसके भीतर बैठ करके तोड़ दिए, लेकिन अब अपराध तो कृष्ण का माना जाएगा, नारायण का तो माना नहीं जाएगा तो और रात भर कांपते रहे और जगे रह गए, कृष्ण का कुछ कोई करे ना, कोई भेजे ना, तो कई जगह नंद महाराज खड़ा किए गोपों को कि आप लोग देखते रहे। दोनों भाई मेरी जो विश्व की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा नंद महाराज कर रहे हैं, यही तो प्रेम है वास्तव में। तो दोनों भाई सुख से सोए और गोप सखा भी सोए, और बड़े बूढ़े गोप सब रात भर जगे रहे, वो नहीं सो। इस तरह भगवान सो रहे, रोज माँ यशोदा के साथ पलंग पर सोते थे। बड़े सुखद घर में आज बगीचा में सो रहे हैं। मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए और किस कोई भी परिस्थिति आ जाए प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान के लिए मथुरा में एक भी घर नहीं, पेड़ के नीचे सो रहे हैं, जमीन पर। वहां कहां ये बेडिंग और होम डिपोर्ट कहते हैं क्या क्या होम डिपोर्ट का ऑफिस डिपोर्ट ये वो ऑफिस में क्या क्या रखेंगे उसके लिए सामान, घर में क्या क्या रखेंगे इसके लिए सामान, भजन कैसे करेंगे उसके लिए एक भी सामान नहीं है इधर के स्टोर में। इंडिया में अभी भी बहुत सामान है, वृंदावन में जाइए तो उधर माला मिल रहा है, कंठी मिल रहा है, चंदन मिल रहा है, भगवान की पूजा के परफर्नालिया मिल रहे हैं, है ना। तो आत्मा के लिए भी सामान मिलता है उधर, इधर केवल देह के लिए मिलता है, देह के लिए सामान मिलता है। और जीवन में ये सब कोई जरूरी नहीं है। भगवान तो सो गए जमीन पर वृक्ष के नीचे। अब सुनिए सवेरे क्या हुआ। कृष्ण बलराम सो रहे हैं, कंस क्या कर रहा है, कंस रात भर एक सेकेंड नहीं सोया अब सुखदेव गोस्वामी इधर कृष्ण लीला कह करके उधर कंस का चरित्र कह रहे हैं। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलस्य च वधम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम। उधर कंस को संवाद मिला कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया और वहां जितने रक्षक थे धनुष के सबको मार दिया, और बलम च जो सेना भेजी गई उसको भी मार दिया। और कैसे, गोविंद राम विक्रीडितम परम, और उनको मारना मारने में उनको कितना परेशान पड़ा, कुछ नहीं, उनकी एक विशेष क्रीड़ा थी। ये भी सुना कि खेल खेल में मार दिया, जैसे बच्चे खेलने और मिट्टी के बने हुए खिलौनों को फोड़ दे खेल खेल में, वैसे सबको मार दिया। सुनाने वालों ने सुनाया होगा कि अरे बाप रे बाप, वो तो ऐसे मारते थे जैसे खेल कर रहे हैं और सब मर गए। तो विक्रीडितम परम, केवल खेल जैसा किए और सब मारे गए। तो कंस को नींद नहीं आई, दीर्घ प्रजागरो भी तो दीर्घम प्रजागरो, रात भर जगा रहा। यह पहले से तो भय था ही, दीर्घ प्रजागरह का अर्थ है पहले भी कई रात सोया नहीं। दीर्घ प्रजागर का प्रकर्षण जागर, जो आदमी न सो पाए चिंता में रहे तो उसको प्रजागर प्रजागृत कर, प्रजागर बहुत जगा रहा। और आज भीत भयभीत था, दुर्निमित्त यानी दुर्मत, वो तो एक तो ऐसे ही उसकी बुद्धि खराब थी और बहुत से अपशकुन देखने लगा, दुर्निमित्त दूषित दृश्य देखने लगा, जागृत में और स्वप्न में भी उभय था, दोनों तरफ से। जगता था तब भी अपशकुन देखता था और सोता था हल्की नींद लगती थी तो उस समय भी दुःस्वप्न देखना चालू किया उस रात में। और जब नींद तो उसको रात भर लगी नहीं, भोर में थोड़ी सी नींद लगी तो उस समय वो दुःस्वप्न देखने लगा। तो दिन में क्या क्या वो दिखता था और रात में, ये सब है मृत्युर दौत्य कराणी च, ये सारे अपशकुन मृत्यु की सूचना देने वाले थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या स्वप्न विचार मीमांसा के अनुसार कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो मृत्यु की सूचना देते हैं, वो स्वप्न बता देते हैं कि अब इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है पहले से। जैसे इधर कार में अगर पेट्रोल घटने लगे तो कोई इंडिकेशन देता है कि पेट्रोल कम हो रहा है, है ना, कुछ ऐसा है या खिड़की खुली है कोई इंडिकेशन बताता है। तो मरने का जब समय आता है तो मनुष्य को कुछ उस तरह के इंडिकेशन मिलने लगते हैं सपना में या जागृत में भी, समझ लेना चाहिए कि अब शरीर जाएगा। कंस के सामने ये सब दुर्निमित्त दूषित अपशकुन उपस्थित होने लगे। मृत्यु और दौत्य कराणी, तो दौत्य कराणी का मतलब है दूत का काम करते हैं आप शकुन, मृत्यु के दूत। मृत्यु डायरेक्ट नहीं आता है, पहले दूत भेजता है। एक बार की घटना है, एक बार एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, तो जवानी में ही उसकी मृत्यु लिखी गई थी। तो जमराज जी आए उसके सामने, कहे कि चलो अब तुम्हारे मरने का समय आ गया, शरीर छोड़ो, नरक में चलना है। तो झुंझला गया जमराज जी पर, क्रोधित हो गया कि तुम कैसे आदमी हो, बिना नोटिस के चले आए, नोटिस देना चाहिए था ना, ये कौन सी कोल्टसी है, कौन सभ्यता है, पहले नोटिस देते इसके बाद आते, सूचना तो देनी चाहिए ना। तो जमराज ने कहा सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो बूढ़ा हो गया बिल्कुल, तब जमराज जी आए तो कहा, तो फिर आ गए बिना नोटिस दिए फिर आ गए। तब जमराज जी कहते हैं कि मैं तो दर्जनों नोटिस भेजा, तुमको नहीं मिला क्या? नोटिस तो मिला लेकिन नोटिस को तुमने सुना नहीं। जब तुम्हारे पैर में दर्द होने लगा और तुम खड़े नहीं रह सकते थे, तो यह भी एक मेरी नोटिस थी। और जब तुम्हारे केस पकने लगे, तो वो हमारी दूसरी नोटिस थी। नोटिस पर ध्यान दिया? और जब कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था, तो वह भी एक नोटिस थी। आंख से दिखाई कम पड़ने लगा, वह भी नोटिस थी। तो कई कई नोटिस मैं तुमको दिया, लेकिन तुमको कोई चेत ही नहीं है, तो चलो। वास्तव में जमराज जी ऐसे अकस्मात किसी को नहीं मारते, वो नोटिस देते हैं। और खास करके अर्जेंट नोटिस होती है कि अब इसके बाद कुर्की वारंट हो जाएगा, चलो नहीं तो। तो वो है लास्ट में वो दुःस्वप्न देखना या दुर्निमित्त देखना। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, कंस जागृत में क्या देख रहा है। आदर्श नम स्वशिर सह प्रतिरूपे च सत्य, भी जल में या पंख में या दर्पण में वह अपनी छवि देखता था दिन में, तो देखता था कि सिर कटा हुआ आ रहा है। यदि ऐसे हाथ से देख करके छू छू करके आज कहता तो सिर है, लेकिन जल में और दर्पण में सिर कटा हुआ है। तो यह मृत्यु का दूत है, जो सूचना देता है कि अभी व्यक्ति एक दो दिन में मरने वाला है। कंस देखने लगा, वो भी जानता था, सुना था ब्राह्मणों से कि इस तरह का आप शकुन होने लगे तो समझना है कि मृत्यु आ चुकी है। देख अदर्शनम स्वशिरस, अपने सिर का अदर्शन, प्रतिरूपे च सत्यपि, सत्यपि शरीर में मस्तक था लेकिन दर्पण में या जल में नहीं दिखाई दिया। कंस का भय इससे भी और अधिक बढ़ गया। असत्यपि च द्वितीय द्वैरूप्यम ज्योतिषां तथा, और कभी कभी नहीं होने पर भी उसे एक वस्तु दो रूप में दिखाई देती थी। जैसे हम लोग आंख में अंगुली डालते हैं तो कभी कभी चंद्रमा दो दिखाई देता है, लेकिन बिना आंख में उंगली डाले ही उसे कोई कोई वस्तु दो दिखाई देने लगी हमेशा। यह अब शकुन है। और छिद्र प्रतीति छाया, और अपनी छाया जैसे सूर्य के रोशनी में छाया पड़ती थी, तो कहीं कहीं देह के बीच भाग में छाया में छेद दिखाई पड़ता, सूर्य की किरण पार करके जाते थे, लगता था कि कहीं शरीर में छेद हो गया, उससे किरण जा रही। लोग खड़े होंगे तो पूरा ठोस बीच में प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन कंस ऐसे खड़ा होता था तो छाया में छेद दिखाई देने लगा। यह अब शकुन जागृत में हो रहा है। प्राण घोषान उपश्रुति, और प्राण घोष प्राण वायु चलती है, सांसें चलती है, तो इसका बहुत ज्यादा ज्यादा आवाज उसको सुनाई पड़ने लगी, अपने आप बहुत अधिक आवाज आने लगी सांस में जागृत में, और स्वर्ण प्रतीति वृक्षे से और झाड़ों में वृक्षों में ऐसा लगता था कि ये सोना के बने हुए हैं, एकदम पीला पीला दिखाई देने लगे, कोई भी हरा वृक्ष हो चाहे कुछ भी हो सब गोल्डन दिखाई देने लगे। यह भी एक मृत्यु की सूचना देता है, स्वर्ण प्रतीति वृक्षे से। स्वप्रदानम अदर्शनम, और कीचड़ में या धूली में जब वो चलता था नंगे पांव तो पैर के निशान थोड़ा भी नहीं उभरते थे। स्वप्रदानम अदर्शनम, ये मृत्यु का सूचक, मतलब उसका वेट खत्म हो गया, शरीर इतना हल्का पवन की तरह हो गया कि कीचड़ पर या धूली पर चरण चिन्ह नहीं उभरता। यह भी एक मृत्यु की सूचना है। यह तो जागृत में होने लगा, और स्वप्न में, स्वप्ने प्रेत परिस्वंग, सपना में कोई व्यक्ति ये देखे कि मुर्दा उठ करके हमारा आलिंगन कर रहा है तो समझना चाहिए कि अब मरण समय आ गया है। प्रेत कहते मरे हुए व्यक्ति को सौ, तो कंस देखा सपना में कि कई मुर्दे उठ उठकर हमारा आलिंगन कर रहे हैं, उसको प्रेत परिस्वंग कहते। और खरयानम, और यह कोई व्यक्ति देखे कि मैं नग्न हूं, कपड़ा नहीं पहना हूं और गधा पर चढ़ा हूं, कंस देखने लगा कि मैं नग्न हूं और गधा पर चढ़ा हूं और पूरे शरीर में तेल लगाया हूं। जब कोई व्यक्ति देखे कि मैं नग्न हूं और शरीर में तेल लगाया हूं और गधा पर चढ़ा हूं, इसमें से तीनों में से एक देखने पर भी कुछ सूचना मिलती है, लेकिन वो तीनों देखने लगा, नग्न भी हूं, तेल पूरा लगाया हूं और गद्दा पर चढ़ा सपना में। और नलदमाली, नलदमाली का अर्थ है जो एक फूल होता है भारत में, इधर भी कई भारतीय लोग रोपते हैं उसको, जापा कुसुम कहते हैं, मतलब अड़हुल, अड़हुल जानते हैं फूल को जो काली जी को चढ़ाया जाता है, भगवान को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, हम लोग उसे अड़हुल कहते हैं, जपा कुसुम कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति देखे कि मैं जपा कुसुम, जपा फूल की माला पहना हूं और नग्न हूं, तो उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। खर यानम दिगंबर, दिगंबर मैंने नग्न, ये सब कंस देखने लगा। अन्यानी चेतन भूतानी स्वप्न जागरितानी च, अन्य भी बहुत से अपशकुन स्वप्न में या जागृत में पश्यन देखने लगा, तो मरण संत्रस्त, मरण के भय से बिल्कुल व्याकुल हो गया। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु सामने आवे तो उसे चाहिए कि शुभ कर्म करे, जो होना है होगा, लेकिन ये उल्टे अब कृष्ण बलराम को मारने की सोचने लगा। अजीब इसकी बुद्धि थी, जब नारद जी ने इसको कहा कि कृष्ण बलराम के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है, तो इसको चाहिए था कि मृत्यु को न बुलावे पास में, तो उल्टे अक्रूर जी को कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को बुला लाओ। अरे जब मृत्यु उनके हाथ से है तो दूर बेचारे रह रहे हैं, ठीक है अपने मृत्यु को पास में क्यों बुला रहे हो। सोचा कि पास में आएंगे तो हम उनको मार देंगे फिर मरेंगे नहीं, और आज इतना स्वप्न देखने लगा, जागृत दशा में देखने लगा ये दशा, फिर भी विवेक नहीं हुआ, अभी भी वो भगवान के चरण में जाकर गिर जाता तो मृत्यु के सारे चिन्हों को भगवान बदल सकते थे, एक क्षण में सब कुछ बदल सकता था। लेकिन उस दुष्ट के गांव में भगवान आए हैं और उनको मारने का फेस्टिवल किया है, इस तरह से कौन से दुश्चेष्टा कर रहा है। मरण संत्रस्त निद्राम लेभे न चिंता, वो चिंता के कारण नींद नहीं आई, थोड़ी सी नींद आई होगी तो सपना देखा होगा, सपना कारण फिर जग गया और निद्रा लेभे न चिंता, चिंता से भय से उसको निद्रा नहीं आई। निद्रा नहीं आई तो भोर में ही बैठ गया, पहले तो लेटा था रात में, थोड़ा सा नींद नहीं आई थी, ऐसे ही बेड पर लेटा था, चिंता में मर रहा था। तो भोर होने पर और क्या क्या किया, व्युष्टायाम निशि कौरभ्य तुर्जे चाद्य सूर्जे चाद्य समुत्थिते कारयामास वैकंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। जब भोर हुआ तब वो कृष्ण को मारने के लिए तुरंत कहा कि अब जो रंगशाला बना था, खूब सजाया गया था बहुत दूर में, वो भी एक अलग स्टेडियम थी या ऑडिटोरियम जो भी कहिए, स्टेडियम जिसमें मंच बनाए गए थे, पहले छोटे छोटे मंच चारों तरफ से, फिर उसके ऊपर सीढ़ीदार, इस तरह से लाखों आदमी के लिए बैठने के लिए वो बनाया गया था, और उसमें दंगल होने वाला था। दंगल का एक नियम बनाया गया था, उसका रिसोल्यूशन था कि इसमें राजा कंस को अपनी अपनी कला दिखाने के लिए सब पहलवान लड़ेंगे, रेसलिंग करेंगे, मल्ल क्रीड़ा। लेकिन भीतर से क्या आशय था कंस का कि कृष्ण और बलराम को इन पहलवानों के साथ लड़ने के लिए बाध्य किया जाएगा और ये पहलवान मार देंगे मर्म स्थान पर, चाहे मुष्टिका से चाहे जैसे भी, बस वहीं मर जाएंगे, ये उद्देश्य था। लेकिन बाहर क्या रिसोल्यूशन पास किया गया था कि राजा कंस को खुश करना प्रजा का कर्तव्य है, इसलिए जो भी पहलवान हैं वे लोग अपनी अपनी कला दिखावे, यहां पर मल्ल युद्ध करें, दंगल करें। आप सुनेंगे बाद में कि किस तरह से कृष्ण बलराम को बाध्य किया गया लड़ने के लिए। मुष्टिक और चारु कहे भगवान से और बलराम जी से कि हे कृष्ण, हे बलराम, तुम लोगों का कर्तव्य है राजा को खुश करने, क्योंकि राजा ईश्वर का अंश होता है, प्रजा जितनी आई है अपनी अपनी कला प्रस्तुत कर रही है, तो तुम लोग भी दंगल करो। भगवान कहते हैं हम छोटे उम्र के हैं, हम सुकुमार हैं, हम कमजोर हैं, इतने बड़े बड़े पहलवान हम इनके साथ नहीं करेंगे, हम अपने मित्रों के साथ दंगल करके राजा को खुश करेंगे। और कंस वहीं बैठा था एक विशेष आसन, और नंद महाराज भी आकर बैठे थे और सब गोप बैठ गए, वो कथा आएगी कल। तो इस तरह से वो सब थे, तो कृष्ण ने कहा कि हम इन लोगों से नहीं लड़ेंगे, हम लड़के हैं, हम अपनी उम्र के लड़कों से राजा कंस को दिखाएंगे अपनी कला। तो मुष्टिक चारुण कहता है न बालो न किशोरस्तम, तुम बच्चा नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, अभी कुबलिया कोई हाथी को कोई बच्चा मारेगा। मारकर भगवान गए थे, उतने बड़े धनुष को तोड़ दिया, कुबलिया पेड़ का वध किया, और ब्रज में सुना हूं केसी को मारा, अघासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, इसको मारा, तुम बच्चा हो, तुम बलवानों में बलवान हो, तुमको चाहे तुम मेरे साथ लड़ो और मुष्टिक के साथ बलराम लड़े। देखिए वहां पर भी हरीश्वर जी टीका में लिखते हैं, देखो भगवान को बाध्य किया जा रहा है कि तुम मारो हमको। भगवान चुपचाप आए हैं, फेस्टिवल में भाग लेंगे, दो चार दिन मथुरा रह करके चले जाएंगे ब्रज में। भगवान रुक गए मथुरा में इसलिए कंस का उन्होंने वध कर दिया, इसके बाद अब सबकी सुरक्षा करनी, नहीं तो वो फेस्टिवल देख करके चले गए। हम तो भगवान को बाध्य किया जा रहा था दंगल करने के लिए, लड़ने के लिए, इसके लिए तो करे क्या, मरना ही था। तो इस तरह से दंगल जो हुआ था, तो कंस भोर में सामंत्रियों को बुलाया और अपने अपने लोगों को बुलाया, कहा कि अब तुरंत मल्ल लीला महोत्सव करो। और समझ गया कि जब और सब मारे गए, धनुष तोड़ा गया, तो बहुत खतरा आ गया। उसने कहा कि मल्ल क्रीड़ा रंग शाला के गेट पर ही कुबलया पेड़ को खड़ा करो, और स्पेशल हाथी वाले को, महावत कहते हैं ना, महावत कहते हैं हाथी वाले को, और क्या क्या कहते हैं, तो उसको कहा कि देखो जब वो वसुदेव के दोनों लड़के आवे, एक सांवला है एक गोरा है, तुम पहचान जाओगे जो अभी अभी धनुष तोड़ा है और इतने लोगों को मारे हैं, तो जैन ही वे रंग भवन के गेट पर आवे हाथी को बीच में खड़ा रखना, देखिए इसकी बदमाशी, जब सब लोग जा रहे हैं तो बीच में हाथी को खड़ा करने की क्या जरूरत है। लेकिन वो कराया गया, पता लग गया कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं तो हाथी खड़ा कर दिया गया, और भगवान कहे और वो कंस कहा कि हाथी से दबवा देना, हाथी पकड़ेगा कृष्ण को सुन में इधर उधर फेंक देगा, चाहे पैर के नीचे दबा देगा, मर जाएगा। इतना आसान समझ लिया। तो जब भगवान गए बहुत शिष्ट भाषा में बोले पहले कर, हे हाथी वाले, हे अम्बस्ट, अम्बस्ट संस्कृत में कहते, हमको मार्ग दो, हमें रंगशाला में जाना है, हाथी बीच में खड़ा क्यों किए। तो वो कहता है तुम जाओ किनारे से। तो भगवान ने कहा हाथी मारेगा, हाथी मारेगा, हाथी को हटा दो, वो तो सूंड बहुत लंबा होता है, पकड़ लेगा हम। तो कहा इससे क्या, हम नहीं हटाएंगे। तो भगवान ने कहा नहीं हटाओगे तो तुमको आज ही जमराज के यहां भेज दूंगा। तो छोटा सा बच्चा ऐसा बोला तो क्रोध में हाथी को चला दिया। इस तरह से कहीं भी भगवान की कोई गलती नहीं, देखिए लीला में कहीं कोई गलती नहीं, सारी गलती कंस की और उसके साथियों की। तो मल्ल युद्ध का महोत्सव हुआ सवेरे ही, नहीं टिकट भी लगाया होगा, क्या किया होगा, सब लोग आया करके बैठने लगे, सबके लिए स्थान था, ब्राह्मण इधर बैठेंगे, क्षत्रिय इधर बैठेंगे, वैश्य इधर बैठेंगे, शूद्र इधर बैठेंगे, और उसमें भी कुछ स्पेशल डिग्निटरीज कहते हैं वीआईपी लोग इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, और राजा कंस के लिए मंच बना था उसके पास में ही, और उसके भाइयों के लिए तथा नंद महाराज के लिए आसन दिया गया, और नंद महाराज के साथ साथ और गोप सब थे। तो ये लोग पहले आकर सीट ले लिए। भगवान कृष्ण सवेरे जब जगे तो जग करके वे अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, जमुना में स्नान किए और नंद बाबा से कहते बाबा हम जाएंगे रंगशाला में। जगने के बाद तुरंत तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग पहले चले जाइए, आप लोगों को सीट नहीं मिलेगी, पहले चले जाइए। शायद भगवान कुबलया पीड़ हाथी को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि नंद बाबा साथ में रहेंगे तो हमको जाने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, इसलिए वो कहे कि बाबा आप लोग जाकर के सीट लीजिए, नहीं तो बहुत लोग आएंगे, भर जाएगी स्टेडियम और समय जगह नहीं मिलेगी। तो नंद बाबा और गोपों के साथ चले गए, केवल कृष्ण बलराम रह गए, और सारे गोप भी जाकर के स्थान लिया अपना अपना। भगवान ने कहा कि हमको तो जैसे तैसे हुआ स्थान दे देगा, देखते ही कितना लोग सम्मान करते हैं, तो हमको और भैया को तो वो दे देंगे स्थान, लेकिन आप लोगों को नहीं देंगे, रोक देंगे गेट पर, इसलिए चले जाइए आप लोग। कुबलया पेड़ का वध करना चाहते थे, नहीं तो गोप सखा भी रहते तो कृष्ण को पकड़ लेते, उधर मत जाओ, उधर चलो छोड़ दो या लौट जाओ ब्रज में, क्या जरूरत है उस मल्लशाला में जाने की, उन्हें रोक सकते थे। इसीलिए सबको भगवान ने ट्रिक से भेज दिया, और दोनों भाई स्नान करके तिलक करके सज धज करके आए। कौन कौन कहां बैठे हैं इसका वर्णन है किया गया है, तो सल तोसल चारुण मुष्टिक कूट ये पांच पहलवान थे, और भी कई कई देवी पहलवान थे। ये सब बाजा बज रहा था तो पहलवान लोग अपना अपना ताल ठोक रहे थे, सब तैयार हो रहे थे राजा को कुश्ती दिखाने के लिए ताल के अनुसार। तो सबसे
ऊंचे मंच पर कंस आकर के बैठा, वो भी सवेरे ही आ गया। सवेरे से ही कृष्ण को मारने के लिए दंगल किया जा रहा है, और ब्राह्मण आकर बैठे, नंद गोपा दयो गोपा भोज राज समा होता, और नंद महाराज आदि गोप जो आए थे तो राजा कंस को ला करके भेंट दिए कि यज्ञ में हम लोग भी सहायता कर रहे हैं। जो जग कृष्ण को मारने के लिए है उसमें ला ला करके दूध घी दही सब दे रहे हैं, उपाय दिए राजा कंस को, और वो लोग बैठे। अथ कृष्णश्च रामश्च कृत शौचौ परम तप मल्ल दुंदुभि निर्घोषम श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतु। जब कृष्ण बलराम स्नान कर रहे थे जमुना जी में, ऊंचे तट पर बैठे थे, तो सुने कि खूब नगाड़ा बज रहा है, शहनाई बज रही है बहुत प्रकार की, तो लोग कहे, भगवान कहे, अरे वो तो चालू हो गया जल्दी कीजिए चालू हो गया उधर बाजा सुन करके उमंग आ ही जाता है, भगवान भी उमंग में आ गए। चलिए 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 चलिए, कृष्ण भाई चालू हो गया, वो दोनों गए। दृष्टुमुपेत, रंगशाला को देखने के लिए, पहलवानी देखने के लिए, और राजा कंस का दर्शन करने के लिए। राजा का दर्शन भगवान के दर्शन के समान माना जाता है, ये भाव व्यक्त कर रहे थे, अपने राजा को देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। राजा को आज देखना नहीं था आज तो उसको मारना था भगवान को, तो गए। रंग द्वारम समाशाद्य, रंग द्वार पर आए, उस रंगशाला को रंग भी कहते हैं, रंग भूमि या रंग क्षेत्र, तो रंग द्वार, इस रंग द्वार पर, उस स्टेडियम के द्वार पर नागम अवस्थितम, भगवान ने देखा कि एक नाग अवस्थित है। हाथी को भी नाग कहते हैं, हाथी खड़ा है, और कैसा हाथी था, कुबलया पीड़, कु का अर्थ पृथ्वी और बलय का अर्थ सरफेस। जब कुबलया पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी दबती थी, दुखी होती थी, इतना भारी था, और उसने अकेले 10,000 बलवान हाथियों का बल था, जैसे दिग्गज है चारों दिशाओं में, या ऐरावत हाथी है, उस तरह का वो हाथी था। उसको खड़ा किया गया था कृष्ण बलराम का वध करने के लिए। तो भगवान ने देखा नागम अवस्थितम, अपश्यत कुबलया पीड़म कृष्णो अम्बस्थ प्रचोदितम। अच्छा, वो हाथी को ऐसे सीधा खड़ा नहीं किया था, ऐसे तिरछा खड़ा कर दिया था, पूरा गेट में वो अट गया था, इतना बड़ा हाथी था, गेट में बीच में नहीं खड़ा किया था, गेट से थोड़ा बाहर, तो कहीं रास्ता नहीं रह गया था कृष्ण को जाने के लिए, दोनों से बाउंड्री बनाई गई थी, रास्ता बनाया गया था जाने के लिए, और हाथी पूरा रास्ता घेर कर खड़ा था। ये कोई आदमियत है बताइए? और सब लोग चले गए थे, कृष्ण बलराम जब जाने वाले थे तब बैरियर लगा दिया, हाथी खड़ा किया गया। तो उसको देखते ही भगवान कृष्ण अपना जो दुपट्टा लिए थे उसको कमर में बांधने लगे, परिकर कहते हैं इसको बांधना, तैयार होने लगे लड़ने के लिए। बद्धवा परिकर अंसौरी समूह कुटिल अलकान, और अपने कुटिल अलकों को जो भगवान की केस मुख पर लटके हुए थे उसको संभाल करके और बांधे, आंखों से फेस दिखाई दे, कहीं केस लटक जाएगा उसी समय कालिया कुबलया पीड़ा करके मार सकता है, तो अपने केसों को सजा करके पीछे कर लिया, हटा करके, और परिकर बांध लिए, अपना कपड़ा बांध लिए कमर में, और उवाच हस्तितम, उस हाथी के पालन करने वाले हाथी के कंट्रोलर से बोले, वाचा मेघनाद गंभीर यार, जैसे बादल गरजता है वैसे कड़क करके बोले, बादल का गर्जन बहुत दूर में जाता है, भगवान बोलते हैं तो लगता है जैसे बादल गरज रहा, तो ऐसे बोले, अम्बस्था अम्बस्थ मार्गम न देही अपक्रम मा चिरम, हे अम्बस्थ हे अम्बस्ट, अम्बस्ट पिलवान को कहते हाथी वाले, हे अम्बस्ट मार्गम देही, नौ मार्गम देही, हम दोनों को मार्ग दो, अपक्रम तुम हट जाओ। मार्ग दो का मतलब यह था कि क्या तुमको नया मार्ग बना दूं? नहीं, अपक्रम हट जाओ वहां से। थोड़ा दूर से भगवान बोल रहे थे, हे अम्बस्ट, हे महावत, हम लोगों को रास्ता दो, थोड़ा इधर उधर हो जाओ। माचिरम वो भी शीघ्र, मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनते ही इधर उधर हट जाओ। तो महावत तो आज उसको मरना था, वो कहता है नहीं हटूंगा तो क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं नोचे, यदि नहीं हटोगे तो सकुंजरम त्वाब्य नयामी जम साधनम, हाथी के साथ तुमको जमराज के घर भेज दूंगा नहीं हटोगे। छोटा सा बच्चा जब ऐसा बोलेगा तो उसको तो ऐसे ही घमंड था उसको, एक तो बहुत बलवान हाथी पर चढ़ा था और वो भी दुष्ट था, बिल्कुल दुष्ट था, तभी तो कंस उसको वहां लाया था कि इस पर रहो हाथी पर तुम मरवान। लेकिन कृष्ण उसे क्रोधित करने के लिए बोले, अगर नहीं हटोगे तो हाथी को तो मारूंगा, तुमको भी जमराज के घर भेज दूंगा। यह ऐसे खूखती है कि जम साधनम, जमराज के सदन में भेज दूंगा, मतलब मार दूंगा, खत्म हो जाओ, इसके बाद जमराज के घर जाओगे कहां जाओगे इसका क्या पता है। लेकिन ये है कि कोई भी प्राणी मरता है तो उसे एक बार जमराज जी के घर जाना पड़ता है, वहां से तब बहाली होती है कि किस योनि में जन्म होगा, किस नरक में जाएगा, कहां जाएगा, क्या जाएगा। तो हाथी तो जमराज के घर नहीं जाएगा, लेकिन महावत जाएगा, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य जो मरते हैं तो जमराज के यहां एक बार पकड़ कर ले जाया जाता है। इसलिए भगवान कहे कि तुमको जमराज के घर भेज देंगे। इस संसार में जितने मनुष्य हैं, आज तो बड़े आनंद में रह रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं और मांस खा रहे हैं, वे सब पकड़कर जमराज के पास जाएंगे लास्ट में, सारे कर्म कंप्यूटराइज्ड है, देखा जाएगा, वो निश्चित हो चुका है कि इसको इस नरक में, इसको यहां मार कर ले जाओ, तड़पाओ। तो भगवान कहे तुमको और हाथी को जमराज के घर भेज दूंगा। एवं निर्भर्सितो अम्बस्ट, इस तरह से एक छोटा सा लड़का जब उस महावत को कठोर कहा, भर्सना किया, तो कुपित, वो कुपित हो गया, ऐसे ही दुष्ट था और फिर कुपित हो गया, कोपितम गजम, और उसने हाथी को कुपित किया, हाथी के मस्तक पर अंकुश मारा, तो हाथी समझ गया कि वो चाहता है इस लड़के को मारने की, प्रेरित किया कृष्णाय कालस कालांतक जमो, तो वो हाथी कैसा था, उसको यदि काल कहा जाए तो ठीक है, या जमराज कहा जाए तब ठीक है, काल के समझ से काल अंत कर देता है समस्त प्राणियों का, वैसे वो भयानक हाथी था, काल के समान जमराज के समान भयानक था, उस हाथी को प्रेरित किया। करिंद्रस्तम अभी दुर्ते करेण तरसा ग्रहित, वो करिंद्र, करि इंद्र, गजेंद्र दौड़ करके अपने सूंड में कृष्ण को पकड़ लिया तत्काल, प्रेरित करना था, बहुत जोर से हाथी चला। जो लोग देखे होंगे हाथियों को दौड़ते हुए समझ जाएंगे कितना तेज गति से जाता है, क्योंकि उसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमने देखा है हाथी को दौड़ते हुए बहुत तेज जाता है दौड़। एक बार हाथी पागल हो गया था, दौड़ करके जा रहा, तो वो बहुत तेज गति होती थी, मनुष्य तो चार पांच पग या दस पग डालेगा तब उसका एक पग होगा, इस तरह से दौड़ता था। तो आया कृष्ण, ऐसी लीला कर रहे थे कि उनको पकड़ ले, वो आया और आकर के सूंड में पकड़ लिया, तरसा अग्रही तेज गति से फुर्ती से पकड़ लिया, कराग विगलित सोम निहत्या ग्रीस्व लिया, तो जब ये सूर में पकड़ लिया तो भगवान समस्त कलाओं के आदि गुरु हैं, वे भी जैसे तैसे उसके हाथ से मतलब सूढ़ से विगलित नीचे गिर गए, विनिर्गत निकल गए, कराद विगलित, गलित का अर्थ है कि नीचे सरक जाना, वैसे पकड़ा था और भगवान अपने शरीर को छोटा बनाए और नीचे गिर गए। इसके बाद उसके सूढ़ पर अपने मुष्टिका से मारे, कोमल कोमल हाथ देखने में, लेकिन महावज्र से भी घातक, भगवान के तो छोटे छोटे ओठ थे, पूतना को दबा दिए, उसी से वो मर गई। देखने में छोटा है लेकिन समस्त तेज और बल उसने है, तो हाथ से मारे उसके सूढ़ पर मार करके, और फिर भाग करके उसके चारों चरणों के बीच में हो गए। वो तो बहुत बड़ा हाथी था, उसके चरण भी तो भारी भारी पिलर के समान थे, ऊंचे ऊंचे, तो उसके चारों चरणों के बीच में कृष्ण हो गए ऐसे। और बलराम जी देख रहे, वो हाथी तो घ्राण दृष्टि होता है, आंख से नहीं नाक से किसी चीज को पहचानता है। पशुओं में भगवान ने यह वृत्ति दी है। तो सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं, संक्रुद्ध स्तम अचक्षाणो घ्राण दृष्टि सकेशवम परामृशत पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गत तम अचक्षाण। भगवान ने बड़े जोर से मारा उसके सूर पर और फिर पैरों में आकर के उसके छिप गए। कृष्ण को अचक्षाण और न देख करके संक्रुद्ध, और बहुत क्रुद्ध हुआ हाथी, और घ्राण दृष्टि सकेश, अब वो सूढ़ से सिंघने लगा इधर उधर कि कहां गया। आंख से हाथी नहीं देख पाता है अपने शरीर की तरफ, हाथी का जो साइज है भगवान ने उस साइज के अनुसार उसको आंख नहीं दिया है, हाथी का आंख छोटा छोटा होता है शरीर के साइज का। ऐसा कहते हैं हमारे यहां गांव में लोग कि भगवान ने उसको इसलिए छोटा आंख दिया है कि शरीर को पूरा न देख पावे, नहीं तो अपने शरीर को इतना बड़ा देखेगा तो उसको बड़ा अभिमान रहेगा, इसलिए भगवान ने छोटा आंख दिया, तो आंख से नहीं देख सकता था, तो सूढ़ से सूंघता था, कृष्ण की गंध ले रहा है। भगवान के दिव्य श्री विग्रह के गंध को ले, और गंध से उसको पता लग गया कि हमारे पैरों के बीच में छिपा है, तो वहां से भी फिर पकड़ लिया। ऐसे सूर चाहे बगल से लगाया होगा, चाहे दोनों पैरों के बीच से लगाया होगा, किसी को पकड़ कर लाए। भगवान ने लीला कर रहे थे, कालिए के देह से तो सट करके आए हैं खेल करके, अब हाथी के सूर में फंस फंस करके लीला कर रहे हैं। तो परामृशत प्रसय, वो कृष्ण को परामृशत मतलब पकड़ लिया फिर से, कैसे पुष्करेण, अपने पुष्कर से, अपने सूर से, लेकिन भगवान फिर जबरदस्ती निकल गए। प्रसाद निर्गत से कृष्ण जब काली कुबलया पीड़ के चारों चरणों में घुसे थे, भीतर हुए थे, तो उनको खोज रहा था, पकड़ना चाहता था, तो भगवान बहुत देर तक इधर उधर होते रहे। ऐसे बाएं मान लो दाहिने से पकड़ना चाहता था तो इधर हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे, कभी आगे, कभी ऐसे, और बार बार पकड़ना चाहता, और बार बार घूमता था इधर उधर, हजारों बार घूमा होगा इधर से उधर, इधर से उधर, और उसके चरणों में ही भगवान छिपे, तो नहीं पकड़ पाता था, लेकिन एक बार पकड़ लिया, और पकड़ लिया सामने लाया तो फिर प्रसह्य विनिर्गत, फिर भगवान जबरदस्ती निकल गए। जो पकड़ा होगा तो भगवान जोर लगाए होंगे हाथी के सूंड पर, मारे होंगे, चाहे जैसे फिर निकल गए, अब निकल करके आ करके पूछ पकड़ लिए, पूछे प्रगृहयात बलम धनुष पंच बिन सत्य, पूछ पकड़ करके 25 धनुष पीछे खींचे। अब वो हाथी बेचारा भारी शरीर वाला, उसको पीछे खींचा जाए तो ऐसे ही बहुत हताश हो गए। 25 धनुष का मतलब होता है 100 हाथ, चार हाथ का एक धनुष होता है, लगभग 150 फीट पीछे खींच कर ले गए कृष्ण। उसने मनुष्यों का हाथ बड़ा होता होगा, इस समय तो एक हाथ 1.5 फीट का होगा, तो खींच रहे थे खेल खेल में, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बकरी के बच्चे को ऐसे खींचो ऐसे खींच कर ले जा रहे थे, कोई जोर नहीं लगा रहे थे, ऐसे दांत करके बहुत ऐसे नहीं कर रहे थे, खेल खेल में खींचते रह रहे। हाथी की तो हालत बिगड़ गई, तो लगता था पीछे गिर जाएगा, वो जोर लगा रहा था कि पीछे न जाऊं, लेकिन कृष्ण ऐसे ठठेर रहे थे, खींच रहे थे उसको पीछे ले। उच्छे प्रगृह बलम, वो अति बल था, हाथी में बहुत बड़ा बल था, लेकिन भगवान 25 हाथ उसको पीछे खींच ले गए। बिचकर्ष जथा नागम सुपर्णी व लीले, जैसे गरुड़ जी किसी सांप को खेल खेल में खींच लेते हैं, वैसे गरुड़ पर बैठने वाले हाथी को खींच रहे थे भगवान खींच रहे थे बहुत आसानी से। गरुड़ जी के लिए किसी सांप को खींचना कठिन नहीं, गरुड़ जी कभी कभी ऐसा करते हैं, सांप के पूंछ को पकड़ करके खूब खींचते हैं, खींचते वैसे करते गरुड़ जी, उसी में उसकी हालत खराब हो जाती। तो हाथी की तो हालत खराब हो गई इतने में पीछे खींच रहे भाई पूछ बताई। एक भक्त ने कहा है कि मथुरा में भगवान एक पशु का पूछ पकड़ करके खींच रहे, किसी को भगवान को खोजना हो तो देखो कुबलया पेड़ के पूछ में लपते हैं, पूछ पकड़ कर खींच रहे हैं। ब्रज में बछड़ों का पूछ पकड़ते हैं और बछड़े उनको खींचते जाते हैं, कृष्ण ब्रजरज में या गोबर में लिपट जाते, वो छोटा सा बच्चा जब थे तो उनको ये पता नहीं होता था कि बछड़े की पूछ छोड़ देंगे तो बच जाएंगे, ऐसे बैठे रहते थे बैठे रहते थे, किसी बछड़े की पूछ पकड़े तब तक बछड़ा खड़ा हो गया और चलने लगा, तो ये रोते हुए और पकड़ लेते थे आय आय, और बछड़े कृष्ण को खींचते। ब्रज में एक बछड़ा भी पूछ में परब्रह्म को घसीटता है, और लोग निराकार कहते हैं भगवान तो यहां हाथी के पूछ को पकड़कर भगवान खींच रहे हैं लीला पूर्वक। सपरिया वर्तमान न शब्द दक्षिण च्युत, जब कृष्ण खींचे उसको और खींच करके एक जगह खड़े हुए तो कृष्ण को अब पकड़ना चाहता था, तो पूछ बहुत लंबी थी और सूर से ऐसे घूमता था पकड़ने के लिए, तो कृष्ण उसके बाएं हो जाते थे और जब बाएं सूर करता था तो दाएं हो जाते थे, इस तरह सैकड़ों बार घुमाए। शब्द दक्षिण था, शब्द और दक्षिण बाएं और दाएं घुमाते घुमाते वो तो हाथी बिल्कुल पस्त हो गया। और पस्त हो गया इस तरह से भ्राम भ्राम मारे ना गोवत्से ने वो बालक, जैसे कोई बालक गाय के छोटे बछड़े के साथ घूमे इधर उधर बाएं बाएं, वैसे भगवान उस विशाल हाथी के साथ घूम रहे। वो कोई भय नहीं था न कोई परिश्रम था। श्री बलराम जी सब देख रहे तो जानते हैं कि ये तो भगवान है, लीला कर रहे हैं। सधावन क्रीड़या भूमौ पतित्वा सहस्वत्थितम् ततो भूमुखम अभ्यत्य पारिनाहत्य वारणम्। इसके बाद भगवान पूछ छोड़ दिए और पूछ छोड़ करके बिल्कुल आगे आगे सूर के पास, और सूर पर फिर मुख कर मारे सामने आकर और मार करके और चले भाग भाग चले। तो भाग चले तो केवल इतनी ही दूरी रखते थे कि कुबलया पीड़ को ये विश्वास हो कि अब पकड़ लूंगा अब पकड़ लूंगा। तो कृष्ण भागने लगे और वो भी दौड़ने लगा, तो दौड़ने से भी उसकी हालत खराब हो गई। दौड़ते थे सहसा उठे तो कृष्ण एक जगह गिरने का नाटक किए, दौड़े भाग रहे थे कृष्ण गिरे, आई पाप ऐसा कह करके कृष्ण गिरे, और गिरे तो वो समझा कि नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण का गिरना और उठना एक साथ हुआ, वो गिरे उठ करके चल दिए। कुबलया पीड़ समझा कि अभी गिरा हुआ है तो अपने दोनों दांतों को जो बड़े विशाल थे मारा कृष्ण पर, तो कृष्ण तो वहां नहीं थे, वो पक्का रोड था, ऐसे उसके दांत में लगे खूब जोर से मारा, तो उसका तो दांत तो ऐसे ही हिल गया कमजोर हो गया, ना जोर से मारा था। अब कोई दांत से पत्थर पर मारे और रोड पर मारे तो उसके दांत कैसे रहता है, और कृष्ण निकल गए बाहर हो गए, इससे उसको बहुत पीड़ा हुई। तम मत्वा पतितम, कृष्ण को पतित जानकर क्रुद्ध दंताभ्याम जो हनत छिटे दांतों से पृथ्वी पर मारा। सब विक्रमे प्रति हते कुंजरेन्द्रोत्तमर्षित, अब अपने विक्रम फेल हो जाने पर, अपना पराक्रम फेल हो जाने पर हाथी बहुत दुखित हुआ, दांत में दर्द होने लगा लेकिन बहुत क्रोधित हुआ, और जो ऊपर अम्बस्त था महावत था वो फिर से हाथी को प्रेरित किया। तब उठ करके कृष्ण को देखा कि निकट ही खड़ा मुस्कुरा रहा है, तो फिर दौड़ा कृष्ण को पकड़ने के लिए, और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा तो इस बार कृष्ण उसका एक हाथ से सिर पकड़ लिए ऐसे, और देखने में छोटा हाथ है और विशाल सिर को पकड़ लिए, और पकड़ करके अब ऐसे ऐसे हिलाने लगे, जो मूल उसका हाथ था अस्त्र था उसी से वो काम कर सकता था, उसको पकड़ लिए। हस्ती शब्द है संस्कृत में, हस्ती का अर्थ है हस्त वाला। भगवान अन्य पशुओं को केवल चरण दिए हैं लेकिन हाथी को चार चरण और एक हाथ भी दे दिए, हाथ के कारण उसको हाथी कहते हैं, हस्ती शब्द को हाथी कहते हैं हिंदी में, हस्ती जिसको हस्त हो है हस्ती, तो हाथ को ही पकड़ लिए भगवान और लगे घुमाने, और घुमाने लगे घुमा करके इसके बाद पटके पटके था सब, पटक करके तुरंत उसका दांत उखाड़ दिए, ढीला हो ही गया था दांत, तो अपने चरण को उसके उसके गर्दन पर रख करके दबा करके और दांत उखाड़ लिए, और जब वो दांत उखाड़ रहे तो एक दांत उखाड़े तो बलराम जी दौड़ करके दूसरा दांत उखाड़ लिए, और उसी दांत से उसको पीटने लगे था ऐसा दोनों भाई, और पीटते पीटते मार दिए, और महावत को भी मार दिए वहीं से, एक ही बार में मर गए, जो महावत हाथी हाँकता था उसको भी मारा और हाथी को पीटते पीटते मार दिया, और बहुत लोग तमाशा देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। इसके बाद दोनों भाई अब चले रंगशाला में, रंगशाला में कैसे चले, एक तो हाथी को मारने में दांत उखाड़ने में खून की बूंदे गिरी थी, लगी थी पीताम्बर पर और देह पर इधर उधर, और हाथ दांत के मूल से खून टपक रहा था, ऐसे हाथी दांत को लेकर दोनों भाई अब रंग भवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये छवि थी भगवान, कहां से अस्त्र शस्त्र खोजे, भगवान दिखा रहे हैं कि हम मारने वाले नहीं है, कुबलया पीर का अंग ही उसको मार दिया, उसका दांत उसको मार दिया। तो दांत को लेकर के चल रहे भगवान, एक तो पसीने की बूंदे भगवान के शरीर पर हैं, पसीना उभरा हुआ है, और दूसरा खून, और अभी ताजा ताजा दांत लेकर के प्रवेश किया, इसीलिए वहां एक विभत्स रस का वर्णन किया गया, कुछ लोग कहें कि कितनी बेवकूफ है सभा में आना नहीं जानते, नौ रस का वहां वर्णन किया गया, इसका वर्णन मैं कल करूंगा, किसको किस तरह से कृष्ण दिख रहे हैं, कृष्ण बलराम जिसका जैसा भाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो उसमें से एक भावना थी कि ये तो बेवकूफ लड़के हैं, का हार लेकर के सभा में घूम रहे एक हड्डी टांग करके घूम रहे हैं, इसको विभत्स रस कहा गया, ये ठीक नहीं, लेकिन और लोग बहुत बहुत ढंग से भगवान को देख रहे हैं। तो कल भगवान प्रवेश करेंगे रंगशाला में, और आप पर निर्भर करता है कि उस गैलरी में स्टेडियम में आप कहां बैठे हैं। अपना अपना सीट अभी से रिजर्व रखिए। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।
अति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगल करिगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण। परिवारी गन मृत्यु मय भव भय सेवत सतत सकल सुखकारी सुमह सभी हरि करित दान की आरती अति पावन सुहान की विषय विलास मोह विनाशी मल विराग विवेक विकासी भगवत का ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उलासी रसिक हृदय रस रास भूति मुक्ति रति प्रेम सुदासी कथा अति चिंतन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद
नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय समापतंतमाशाद्य भगवान मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तम् पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्रैव लीलया दन्तमुत्पाट्यते नेभम् हस्तिपांश्चाहनद्हरिः।
जब कुबलया पेड़ भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान कृष्ण उसके भय का नाटक करते हुए आगे भागे, तो वह कुबलया पेड़ भी उनके पीछे उनको मारने के लिए चला। लेकिन जब कुबलया पेड़ हाथी उन्हें मारने चला तो भगवान उसके पास निर्भय आकर उसके हस्त को, सूंड को पकड़ लिए और सूंड पकड़कर उसे घुमाकर और धरती पर पटक दिए। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान को मधुसूदन कह रहे हैं। मधुसूदन से तात्पर्य है जो भगवान मधु नामक दैत्य का विनाश किए थे, वध किए थे, उनके लिए इस कुबलया पेड़ हाथी का वध कर देना कौन बड़ी बात। मधु नाम का एक दैत्य था, उसे भगवान ने मारा था, बहुत पराक्रमी दैत्य, इसी से भगवान को मधुसूदन कहते हैं। मधुसूदन, सूदन का अर्थ है दुखद, विनाशक, मधुसूदन भगवान मधुसूदन, सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यपूर्ण मधुहंता भगवान उस कुबलया पीड़ के सूंड को पकड़कर और घुमाकर ऐंठ कर उसको गिरा दिए भूतल पर। और पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र लीलया, और जब कुबलया पीड़ गिर गया तब अपने एक पैर से उसके देह को आक्रांत करके और ब्लात दंत उखाड़ लिए, दंतम उत्पाट्य, दंत को उत्पाट्य उखाड़ लिए, और तेना दंतेना उसी दांत से इभम हस्ति को, कुबलया पीड़ को तथा हस्तिपम हाथी के पालक को, महावत को मार दिया। अहनद हरि, यहाँ हरि शब्द सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इसका अर्थ है जैसे हरि सिंह हाथी का वध कर देता है, प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने कुबलया पीड़ का प्राण हर लिया। हरि मृतकम द्वीपमुत्सृज्य दंत पाणी समाविशत अंश न्यस्त विषाणु श्रृंग मद बिंदु भी अंकित विरूढ़ स्वेद कणिका बदनाम ब्रह बभव। मृतकम द्वीपम उत्सृज्य, मरे हुए द्वीप को, हाथी को छोड़कर और दांत लेकर भगवान श्री कृष्ण रंगशाला में प्रवेश किए। समाविश द्वीप हाथी को कहते हैं, द्वीप अर्थ दो बार और प का अर्थ पीने वाला, जो दो बार पिए उसको द्वीप कहते हैं। हाथी एक बार जल को सूंड से पी लेता है और पी करके तब ऐसे मुख में दोबारा फिर पीता है, तो द्वीप कहते हैं। एक बार सूंड में पीता है और एक बार मुख में पीता है, द्वीपम। और जो द्वीप है दीर्घ हिकार से लिखा जाता है, उसका अर्थ होता है टापू, जल के बीच का जमीन, और वो हर्ष विकार से लिखा जाता है द्वीप, दो बार पीने वाला। तो मरे हुए द्वीप को छोड़कर, हाथी को छोड़कर दंत पाणी, पानी में दांत लेकर अंश न्यस्त विषाण, अंश न्यस्त विषाण, हाथ से हाथी के दांत को पकड़े तो दांत बहुत लंबा था, मोटा था, और उसका एक सिरा अंश न्यस्त, अंश पर कंधे पर न्यस्त थे। तो श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर अश्रिक मद बिंदु भी रंगित, उनका सुंदर शरीर हाथी के रक्त से तथा हाथी के मद से अंकित था। हाथी के गाल के पास मद चूता है, बहुत सुगंधित, उस पर भौंरे लुब्ध रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के देह में हाथी का मद सट गया था तथा खून के छींटे पड़े, और ऐसे ही हाथी दांत लेकर के और खून तथा मद से अलंकृत होकर विरूढ़ स्वेद कर्णिका, और हाथी को मारने में परिश्रम हुआ था इसलिए पसीने की बूंदें आ गई थी चेहरे पर, इस कारण से भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। वैभव सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाथी के खून लगने से तथा उसका मद और पसीने की बूंदों से श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसी दशा में वे रंगशाला में प्रवेश किए। चाहिए था कि भगवान स्नान कर ले कहीं, ठीक होकर के सभा में प्रवेश करें, लेकिन इस सभा में प्रवेश करने की रीति दे, लाखों लोग बैठे थे उनको देखने के लिए, रंग महोत्सव दंगल हो रहा। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मुख कमल का ध्यान करते हुए कहते हैं विरुद्ध स्वेद कणिका, विरुद्ध विशेष रूप से उभर आई थी स्वेद कणिकाएं पसीने की बूंदे, और इस कारण से बदना बुरह उनका बदन कमल प्रभव बहुत सुंदर लग रहा है। श्री कृष्ण इस तरह बहुत सुंदर लग रहे थे, और उनके साथ बहुत कम गोप थे उस समय। बलराम जी थे कते पय गोप, कुछ गोप थे, और सब गोप जा जा करके अपनी सीट ले लिए थे रंगशाला में, इस कारण से कि वे सोचते थे कि बाद में घर जाएगा तो बाहर ही रह जाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे, जा जा करके अपना आसन ले चुके थे। वृतौ गोपै कतिपयै बलदेव जनार्दन, श्री जनार्दन बलदेव जी के साथ रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृतो कतिपय गोपय, कतिपय माने कुछ गोपों के साथ थे, कतिपय का अर्थ कुछ ही थोड़े से गोपों के साथ। रंगम विविशतु राजन गजदंत बरायुधौ, हे राजन हे महाराज परीक्षित, कृष्ण और बलराम दोनों रंगशाला में प्रवेश किए कुछ गोपों के साथ। जैसा वर्णन पहले किया गया वो रक्त बिंदुएं लगी थी, मद बिंदु और श्वेत बिंदु, श्री कृष्ण के सुंदर अप्राकृत चिन्मय शरीर पर ये सब वस्तुएं और लगने से श्री कृष्ण और सुंदर लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, संस्कृत में एक उक्ति है सुंदरे किम सुंदरम, जो व्यक्ति सुंदर होता है वह कुछ भी करे तो सुंदर लगता है। सुंदर व्यक्ति फटा पुराना कपड़ा भी पहने तब भी सुंदर लगता है। तो श्री कृष्ण पर खून लगा है, मद बिंदु श्वेत बिंदु, लेकिन वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस तरह भगवान प्रवेश कर रहे हैं श्री बलराम जी के साथ। दोनों भाई गजदंत बरायुधौ, गजदंत हाथी का दांत ही उनके लिए श्रेष्ठ आयुध था। यह प्रश्न हो सकता है कि सभा में हड्डी लेकर के क्यों प्रवेश किए लोग, ये कैसी लीला है भगवान की। हाथी का दांत तो वैसे बहुत कीमती होता है, भगवान ने अपनी बुद्धि लगाया कि कम से कम हाथी मारा तो इतना दाम, हाथी दांत बहुत कीमती होता है, लेकिन फिर भी हड्डी है उसको लेकर के सभा में प्रवेश किया। तो जब भगवान सभा में प्रवेश किए श्री बलराम जी के साथ, तो उस सभा में भिन्न भिन्न दृष्टि वाले लोगों ने भगवान को भिन्न भिन्न रूप में देखा। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, जाकर रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यही से उन्होंने लिया है इस प्रसंग। तो श्री कृष्ण और बलराम को किस रूप में देख रहे हैं भिन्न भिन्न दृष्टिकोण वाले लोग, यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मल्लानामस निर्निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराद विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। किसको श्री कृष्ण कैसा लग रहे हैं, यहां पर कई चेतना वाले लोग बैठे हैं सभा में मथुरा में, तो अपनी अपनी चेतना के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, भावना के अनुसार भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। सुनिए किस तरह से, मल्ला नाम अशनि, उस सभा में जो मल्ल थे, पहलवान थे, उन्हें श्री कृष्ण अशनि वज्र के समान दिखाई दिए, क्योंकि बहुत सुकुमार, फूल से भी सुकुमार भगवान है, लेकिन उन लोगों को अशनि, अशनि कहते हैं वज्र को, पर्वतों को भी विदीर्ण कर देता है, इतना कठोर वज्र है, वज्र जैसा शरीर दिखाई दिया, वज्र के पर्वत जैसा दिखाई दिए दोनों भाई। यद्यपि वे दोनों 11 वर्ष के लड़के थे, लेकिन पहलवानों को दिखाई दिए कि महा रौद्र रूप, भयावह, बहुत विकराल रूप दिखाई दिए वज्र के समान। मल्लानम असन और नृणाम नरवरह, वहां जो सामान्य मनुष्य बैठे थे उन्हें नरवरह श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। विस्मय हुआ उनको देख करके, करी क्या मनुष्य भी ऐसे होते हैं। उनके तेज सौंदर्य आदि को देखे थे ही और लीला भी सुने थे, तो जो मनुष्य समाज था बैठा हुआ जनरल विस्मित हुआ, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितनी सुंदर तेजस्वी हैं, उन्हें आश्चर्य हुआ। नृणाम नरवरह स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और वत्सल्य भाव वाली स्त्रियों को छोड़कर युवती और माधुर्य भाव वाली स्त्रियों को भगवान मूर्तिमान कामदेव के रूप में दिखाई दिए, अर्थात श्री कृष्ण को देखते ही युवती स्त्रियों के हृदय में एक अद्भुत लालसा का उदय हुआ श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उसको स्मर कहते काम। स्त्रियों सखा बैठे थे भगवान के, तो भगवान के सखाओं ने विचार किया ये अपना व्यक्ति है और क्या एक खून लगा लिया और बहुत, और ऐसे तो लोगों को हंसी आ रही थी। कृष्ण के इस विचित्र वेशभूषा को देखकर गोप सखाओं को हंसी आ रही थी। और असतम क्षिति भुजाम शास्ता, और जो पृथ्वी को भोगने वाले थे राजा, जो असत राजा, दुष्ट राजा लोग थे, उन लोगों ने देखा कि साक्षात जमराज आ गए, उन्हें बहुत भय हुआ। शास्ता दंडधर, दंड देने वाले जमराज आ गए। बताइए, भगवान एक ही हैं लेकिन वे भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। असतान क्षिति भुजाम शास्ता स्वपित्र हो शिशु और नंद महाराज तथा वसुदेव जी देवकी आदि वहां बैठे थे उस सभा में, तो उन्हें अपने शिशु के रूप में कृष्ण दिखाई दिए। शिशु का भाव यह है कि उनके भीतर दया उत्पन्न हुई कि कहीं इन बड़े बड़े पहलवानों के साथ कृष्ण और बलराम की प्रतियोगिता न चालू हो जाए। तो वे शिशु के रूप में देखते, एकदम बच्चा के रूप में दया उत्पन्न हो गई। और मृत्युर्भोज पते, कंस देखा कि साक्षात मेरी मृत्यु के रूप में आ गए। मृत्यु जैसा, मतलब उनको बहुत, उसको बहुत भयंकर लग रहे थे, विकराल दांत वाले, विकराल वेशभूषा वाले, उसको ऐसा लगा कि साक्षात मृत्यु ही रूप धारण करके मेरे पास आ गए। मृत्युर्भोजपते विराट अविदुषम, और जो अविदुष से मूर्ख थे उस सभा में बैठे हुए, उन लोगों के लिए श्री कृष्ण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहे थे। उन लोगों में जुगुप्सा उत्पन्न हुई, घृणा उत्पन्न हुई, उसको विभत्स रस कहते हैं। उन लोगों ने सोचा कि ये कैसे पागल लड़के आ गए, हड्डी टांग करके और खून लगाए हुए सभा में आ गए, उन्हें वे अच्छा नहीं लगे। तत्वम परम योगी नाम, और जो उसमें योगी बैठे थे, ज्ञान योगी, वे लोग देखे कि साक्षात पर ब्रह्म है, शरीर धारण करके आ गया, परम तत्व वे पहचान गए कि पर ब्रह्म आ गए। और वृष्णि नाम पर देवता, वृष्णि वंशियों को, जादवों को ऐसा लगा कि हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु भगवान आ गए। इति विदितो रंगम गतः साग्रज, साग्रज अग्रज के साथ, श्री बलराम जी के साथ भगवान जब रंगशाला में प्रवेश किए, तो इस प्रकार भिन्न भिन्न लोगों के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न तरह से विदित हुए, दिखाई दिए। अब विचार कीजिए किस दल में कौन सा रस है, कौन सा भाव है। संस्कृत में या हिंदी में भी बताया गया है, बहुत से रस हैं साहित्य के। रस, रस का अर्थ होता है चमत्कारी सुखम रस, जो सुख है मनुष्य को चमत्कृत कर दे उसको रस कहते। चमत्कार का क्या अर्थ है? चमत्कार का अर्थ है जब किसी बात को सुन करके या किसी चीज को खा करके और आंख विस्फारित हो जाए और मुख से निकले आहा आहा। ठीक है, रख दीजिए, हम ले लिए। जब मुंह से आहा निकले और आंखें खिल जाएं, तो इसको चमत्कार कहते हैं। जैसे कभी कभी भोजन रसिक लोग, खास करके ब्राह्मण जब भोजन करते हैं और कोई चीज बहुत स्वादिष्ट लगता है तो कहते आहा हा, इसको चमत्कार कहते। और चमत्कार करने वाले सुख को रस कहा गया, चमत्कारी सुखम रसम, भरत ने अपने नाट्य में कहा है ग्रंथ में। भरत नामक एक ऋषि हुए थे, उसको भरत नाट्यम कहते। अब के लोग भरत नाट्य नहीं हो तो भ्रष्ट नाट्य करते कोई दम नहीं तो इस प्रकार विविध रस हैं, साहित्यकारों ने इन सब का वर्णन किया है। और श्रील रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु में इन समस्त रसों को स्पिरिचुअल अर्थात भगवान से संबंधित होने पर ही रस माने हैं, अन्यथा रस नहीं माने हैं। पर भगवत संबंधी भगवान के कारण भी जो भाव उत्पन्न होते हैं विविध है, तो वे उनको भिन्न भिन्न रस कहा गया है। तो देखिए किस में क्या रस है, कौन किस भाव से देख रहा है। मल्ला नाम अशनी, जो मल्ल थे, जो अपने को वीर मान रहे थे कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं और लड़ाकू हैं, तो वे लोग ऐसा देख रहे थे कि श्री कृष्ण और बलराम वज्र के पर्वत जैसे हैं और लड़ने योग्य हैं, इनके साथ हम दंगल कर सकते हैं। तो उनमें एक उत्साह बढ़ा। सुकुमार नहीं देख रहे थे, आगे चलकर के कहेगा चारुण कि तुम सुकुमार नहीं हो, तुम वज्र से भी कठोर दिखाई दे रहे, क्यों कहते हो कि हम बच्चा। उनको रौद्र रूप में वो दिखाई दिए। यह रौद्र रस है, पहलवानों को इस रूप में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और नृणाम नरवरह नृणाम जो साधारण मनुष्य थे, उस सभा में बैठे हुए थे, पापी नहीं थे, सब धर्मात्मा थे, उन लोगों को भगवान नरवरह श्रेष्ठ नर के रूप में दिखाई दिए, या नर से श्रेष्ठ, इसका अर्थ है अद्भुत अलौकिक मनुष्य। इस लोक में कभी ऐसा वो सुने नहीं थे, देखने की तो बात दूर रही। तो श्री कृष्ण को देख करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, इसको अद्भुत रस कहा गया है साहित्य में। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ है अलौकिक, जो लोक में न सुना गया न देखा गया, उसको अद्भुत कहते। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय होता है कि किम इतना सुंदर है, किम इनमें इतना तेज है, कितना ही निर्भय है, कितना सुंदर है, यह सब भाव उनमें उत्पन्न हो रहे थे। यह विस्मय और इसको अद्भुत रस कहते हैं। विस्मय इसका स्थायी भाव है और इस रस को कवियों ने, भक्तों ने अद्भुत रस कहा। ये सब बड़े चकित होकर के कृष्ण और बलराम को देख रहे थे, कहाँ के हैं, कौन है, कैसे हैं, तो अद्भुत है, ऐसा हमने सुना नहीं था, देखा नहीं था। आपस में सब बात कर रहे थे। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और युवती स्त्रियों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके हृदय में श्री कृष्ण के संग रहने की लालसा उत्पन्न हो गई। वे मन में मनोरथ करने लगी, श्री कृष्ण के साथ कब हमारा मिलन होगा, कब हम इनकी सेवा करेंगे रहेंगे। उनको मूर्तिमान कामदेव के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे, अर्थात अति सुंदर, अति सुंदर स्त्रियों को, युवती स्त्रियों को। देखिए पहलवानों को दूसरे रूप में दिखाई दे रहा है, मनुष्यों को दूसरे रूप में, स्त्रियों को दूसरे रूप में, भिन्न भिन्न रूप में। और हाँ, तो यहां पर स्त्रियों में श्रृंगार रस है, उसको श्रृंगार रस या उज्ज्वल रस कहते हैं, जो अप्राकृत धरातल पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्त्रियों का भाव होता है, उसको उज्ज्वल रस कहा गया। उज्ज्वल, उज्ज्वल जिसमें काम वासना बिल्कुल नहीं है, वह उज्ज्वल जो चमकता हुआ दिव्य रस है, उसी को श्रृंगार रस कहा जाता है। यह सभी रसों से श्रेष्ठ माना जाता है। और गोपा नाम स्वजनो, गोपा नाम कृष्णस्य सखी नाम, जो कृष्ण के सखा थे, वे सब जब श्री कृष्ण को देखे प्रवेश करते हुए, जो पहले मैं कहा था कि और लोग अपनी अपनी सीट ले लिए थे, तो ये लोग जब देखे तो क्या नाटक बना लिया है, ब्रज में तो कभी ऐसा नहीं किया था। तो उन लोगों को हंसी आने लगी। श्री कृष्ण को बिल्कुल अपने सखा के रूप में ही देख रहे थे, स्वजन हमारा मित्र है और आज हाथी दांत लेकर आ गया, बिना नहाए धोए सभा में आ गया। नहा धोवा करके चले थे लेकिन बीच में हाथी मारने से खून लग गया और मद लग गया। जमुना से स्नान करके ही चले थे भगवान सवेरे, लेकिन बीच में ये सब तमाशा हो गया। तो बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे अपने सखा कैसा, तो उनको हंसी छूट गई। इसको हास्य रस कहते हैं, ये साहित्य का एक रस है हास्य रस। इसका स्थाई भाव भी हास्य ही है, हंसी आना। असतां क्षिति भुजां शास्ता, जो दुष्ट राजा थे वे लोग देखे कि साक्षात जमराज आ गए। उनको भगवान बहुत है हयावह दिखाई दे रहे थे। असतम साधु ने व शास्तम क्षिति भुजाम राज्ञाम श्लेषण क्षिति में वह भक्षयतम दंड करते थे। तद्विरजाति शय पश्यतम जुदुत्साह उपस्थाई भी। जितने राजा थे उनको लगा कि साक्षात जमराज आ गए हैं, तो श्री कृष्ण को देख करके उनके भीतर, राजाओं के भीतर युद्ध का उत्साह हुआ। ये उत्साह स्थायी भाव है वीर रस का, तो उनमें वीर रस का संचार हुआ। श्री कृष्ण से युद्ध करने की लालसा हुई, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत बलवान जमराज के समान दिखाई दे रहे थे उनको, जो दुष्ट राजा थे। वास्तव में भगवान दुष्ट राजाओं का वध करने के लिए ही अवतार लिए, और अब तक तो वे राजा का वध नहीं किए थे ब्रज में, अब मथुरा से राजाओं का वध चालू करेंगे। सीरियल नंबर से पहले कंस का वध करेंगे, और इसके बाद जब तक भगवान रहे केवल सरकारी आदमी को मारते थे, दुष्टों को, सब राजाओं को मारते थे। क्योंकि राजाओं को यदि ठीक कर दिया जाए तो जनता अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उन दुष्ट राजाओं को जो कंस के निमंत्रण में आए थे, उन लोगों को बड़ा विकट रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे, और उनके भीतर युद्ध करने का उत्साह हो रहा था कृष्ण से, उनमें वीर रस का उन्मेष हो रहा था। और पित्रोह शिशु वसुदेव जी और नंद महाराज आदि जो उस सभा में बैठे हुए थे, उनके मन में करुण रस उत्पन्न हो रहा था। करुण रस भी एक रस है, वे मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे। वो नंद बाबा सोच रहे थे क्यों लाया इन बच्चों को यहां पर, अक्रूर गया था फिर भी रोक लिया होता है, क्यों लाया, तो कहीं ऐसा न हो कि इन बच्चों को इन पहलवानों से भिड़ाया जाए, युद्ध कराया जाए। एकदम छोटे कोमल शरीर वाले बच्चे दिखाई दे, और शिशु इसलिए कहते हैं कि इन बच्चों को पता नहीं है कि समाज में कैसे आना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बताइए हड्डी टांग करके आ रहे हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी ये सोच रहे थे कि इनको कोई ज्ञान नहीं है देश काल का, बिल्कुल बच्चा है, शिशु शिशु। इस रूप में यहां पर करुण रस है, चित्त द्रवित हो रहा है करुणा से। मृत्युर भोजपते हैं, भोजपति कंस को कहते हैं, भोज वंश का पालक राजा कंस श्री कृष्ण को अपनी मृत्यु के रूप में देखा। बहुत भयावह लग रहे थे भगवान, तो इसलिए यहां पर भयंकर रस है, भय, मन में भय होना भी एक रस कहा है साहित्यकारों ने। भय उत्पन्न हुआ कृष्ण कंस को, कृष्ण को देखकर वो कांपने लगा अपने आसन पर, सबसे बड़े मंच पर बैठा था लेकिन वहीं पर कांपने लगा, रही बाप कौन आ गया, मेरा काल आ गया, मृत्यु के रूप में देख रहा है। और विराट अविदुषाम, अविदुषाम का अर्थ है जो लोग कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख ऐसे ना समझ लोग उस सभा में बैठे हुए थे, तो वे अविराट के रूप में देख रहे थे। अविराट का अर्थ होता है उनको अच्छा नहीं लगा, खून से सना हुआ देह, कपड़े पर खून के छींटे, पसीना और गजदंत लेकर के सभा में प्रवेश किए, तो ये कहे तो बिल्कुल नालायक, इनको बाहर करना चाहिए। उनको जुगुप्सा उत्पन्न हुई, इसको विभत्स रस कहते हैं, विभत्स रस। खून उखाड़े हैं हाथी से और खून से दांत टपक रहे हैं, अभी खून टपक रहे हैं दांत से, ऐसे आ रहे। तो इसलिए उन लोगों को हुआ कि इनको कौन आने दिया, इनको बाहर करो, इनको जुगुप्सा उत्पन्न हुई। निंदा, निंदा रस, निंदा भी एक रस है। लोग आपस में करने लगे, कहां के लड़के हैं बेवकूफ, ऐसे आ गए सभा में। आज के युग में तो सबसे ज्यादा बड़ा रस है निंदा रस। हमने एक लेख पढ़ा था निंदा रस, और कोई आदमी कुछ करे या न करे, हो सकता है कि महामंत्र का एक माला भी जप न करता हो, लेकिन प्रतिदिन कुछ दूसरे की निंदा कर ही लेता है, इतना ये बड़ा रस है। कुछ न कुछ दूसरे की कटाई करके तब ही नींद लगती हो कुछ लोगों को, वैसा है ये है वो है वो है, तो कुछ लोग निंदा करने लगे उस सभा में, इसको विभत्स रस कहते। जो अज्ञ थे, तत्त्वम परम योगिनाम, जो योगी थे उस सभा में, जो भगवान को प्राप्त करने की साधना करते थे, ज्ञानी जन जो वास्तव में ज्ञान के स्तर पर थे, उन लोगों ने देखा कि साक्षात वेदांत सिद्धांत ही मूर्ति धर कर आ गया, साक्षात पर ब्रह्म आ गए, जिनका उपनिषदों में और वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया, इसको शांत रस कहते हैं। शांत का अर्थ है संसार से बिल्कुल मन हट जाना और भगवान में आविष्ट हो जाना, इसको शांत रस कहते हैं। वे सब भगवान पर ही अपनी दृष्टि लगाए रखे और अनुभव करने लगे कि साक्षात परब्रह्म है। ऐसा वे अनुभव किए कि ध्यान में हम जिनको देखते हैं वही प्रभु आ गए, ऐसा उन ज्ञानियों को लगा। या शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, योगी जति जिनका ध्यान करते हैं वही भगवान परब्रह्म है, साक्षात आ गए, ऐसा वे लोग अनुभव कर रहे थे, उनको बड़ा आनंद मिल रहा था। बताइए कहां ध्यान करना और कहां आंख से देखना उसी तत्व को, तो ये शांत रस में विभोर हो रहे थे। और वृष्णि नाम पर देवता, वृष्णि वंशी जो जादव थे, वे भगवान को अपने वास्तविक देवता आराध्य के रूप में देख रहे थे, ऐसा अनुभव कर रहे थे कि हमारे प्रभु विष्णु ही साक्षात आ गए, हमारे वंशधर बन करके हमारे वंश में जन्म लिए। तो इनमें एक दसवां रस जो शास्त्र में कहा गया है, नौ रसों का वर्णन पहले किया गया, ये है सप्रेम भक्ति रस, प्रेम के साथ भक्ति का रस जो है उसको सप्रेम भक्ति रस कहा गया। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने इस रस को सबसे उत्कृष्ट माना है, कृष्ण से युक्त है यह। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न धारणा वाले, भिन्न भिन्न ज्ञान वाले लोग भगवान को भिन्न भिन्न देख रहे थे, लेकिन क्या ये प्रश्न होगा कि क्या भगवान भिन्न भिन्न है? नहीं, ये कहीं वस्तु है लेकिन अपनी अपनी दृष्टि का भेद है। एक भक्त कहते हैं, विभिन्न दृष्टि दृग्भेदात भिन्नो भाति जगत प्रभु, न वस्तुतः स्पष्ट न वस्तुतः स्पष्टम अभूत एतत् न वस्तुतः स्पष्टम अभूत एतद् रंग जन क्षणात्। भिन्न भिन्न दर्शकों की दृष्टि में भगवान भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे थे, पर वास्तव में वे भिन्न भिन्न नहीं है, यह सिद्धांत स्पष्ट हो गया रंगशाला में लोगों की दृष्टि से। चेतना की भिन्नता है वास्तव में। कुछ लोग भगवान को निराकार समझते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अंधकार के अलावा और कुछ है ही नहीं। जैसे इस रूम का लाइट एकाएक ऑफ कर दिया जाए रात में तो सब चीज निराकार हो जाएगा, टेबल नहीं दिखाई देगा, श्री विग्रह नहीं दिखाई देगा, प्रभुपाद नहीं दिखाई देंगे, चेयर नहीं, कुछ नहीं। और उस दशा में कोई आंख खोल करके देखे भी और उससे दूसरा आदमी पूछे क्या दिखाई दे रहा है, निराकार सब चीज, कुछ भी नहीं है निराकार। तो अंधकार से चित्त ग्रस्त हो जाता है वास्तव में। अज्ञान से जिनका चित्त ग्रस्त है वही भगवान को निराकार के रूप में देखते हैं, अन्यथा भगवान का आकार है दिव्य। और भी आजकल या अनादि काल से ही मनुष्य समाज में भगवान के विषय में भिन्न भिन्न धारणा है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भगवान अब नहीं होंगे, क्योंकि जैसे सब लोग बूढ़ा होकर के मर रहे वैसे वो भी मर गया होगा, अब भगवान को मानते हैं लेकिन अब नहीं होगा, या होगा भी तो कहीं अस्पताल में दाखिल होगा, मरने की हालत में होगा या बूढ़ा हो गया होगा। एक जगह एक मंदिर बनाया गया है जिसमें भगवान की पकी हुई दाढ़ी दिखाई गई कि बूढ़ा हो गया, इंडिया में एक मंदिर। इस तरह से मूर्ख लोग किया करते हैं, उनको पता ही नहीं है भगवान के स्वरूप का। जैसी चेतना है प्रकृति के गुणों के अनुसार, जैसा ज्ञान है कंटेमिनेटेड या भ्रष्ट ज्ञान, उसके अनुसार भगवान के विषय में अटकलबाजी किया करते हैं और किताब लिखते हैं। किताब लिखते हैं तो दूसरे लोग नोबेल प्राइज देते हैं उनको, बहुत ज्ञानी है इसको दो। अच्छा, और भौतिक विज्ञान को लिखे तो कोई बात नहीं, कुछ लोग तो भगवान के बारे में लिखा करते हैं और कुछ ज्ञान नहीं है उनको। हमारे यहां लाल बुझक्कड़ कहते हैं, लाल बुझक्कड़। एक गांव में एक लाल बुझक्कड़ रहता था। बुझक्कड़ मतलब बुझ जाने वाला, समझ जाने वाला। कोई भी गंभीर समस्या होती थी तो लोग लाल बुझक्कड़ से पूछते थे। लाल मतलब रत्न, समझने वालों में, ज्ञानियों में रत्न, उसको लाल बुझक्कड़, भोजपुरी भाषा है इसको। कोई समस्या होती थी तो गांव के लोग पूछते थे इसका क्या रहस्य है, तो वही बताते थे, तब सब लोग मान लेते थे। उस गांव में एक हिरण रहता था, हिरण रहता था, और हिरण के अलावा उस गांव के लोग और बड़े बड़े पशुओं को जैसे ऊंट हाथी आदि को नहीं देखे थे कभी भी। एक दिन की बात थी, उस गांव में रात के समय कोई हाथी पार किया, गया होगा किसी दूसरे गांव में, हाथी पार किया तो गली के धूल में हाथी के पैर उखड़े थे। हाथी के पद चिन्ह बने हुए थे धूली पर। तो सवेरे गांव के लोग जगे और आपस में विचार करने लगे, भाई ये कौन जानवर गया, ये किसका पद चिन्ह है, चरण चिन्ह किसका उभरा हुआ है। बोलो हाथी कभी देखे नहीं थे इतना बड़ा पैर। तो आपस में लगे मीमांसा करने, क्या है कैसा है ये, कौन जानवर गया है, इतना बड़ा बड़ा पद चिन्ह कैसे है। तो कुछ भी निर्णय पर नहीं पहुंचे, तब लाल बुझक्कड़ जी को बुलाए। लाल बुझक्कड़ दिमाग लगाए कि भाई किसका चरण चिन्ह है, एकाएक समझ गए, समझ गया। लाल बुझक्कड़ बुझ गया और न बुझे कोई, पैर में चक्की बांध के हरिणा दौड़ा हो। वो कहा कि वो देखो ये हरिण दौड़ा है, छलांग मारा है बड़ा बड़ा, और चारों पैर में चार चक्की बांधा है आज रात में, ये हरिण चला हुआ है, चक्की बांध करके चारों चरण में, चक्की मतलब आटा पीसने वाली चक्की, आप लोग देखे होंगे गांव, तो चारों चरण में चक्की बांध करके हरिण दौड़ा है आज इस गांव में। समझ गया। तब सब लोग कहने लगे थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हम लोग तो ज्ञान संकट में पड़े हुए थे, आपने सहज ही समाधान कर दिया, धन्यवाद। तो ज्ञान का उपदेशक और श्रोता दोनों वास्तव में गायब बीते थे, गोबर गणेश। इसी तरह की बातें आजकल हो रही है, ईश्वर के बारे में बोलने वाले और सुनने वाले, लिखने वाले और पढ़ने वाले, दोनों वैसे ही हैं। सामने भगवान है कंस की रंगशाला में, लेकिन फिर भी अपनी जैसी स्थिति है वैसा ही दिखाई दे रहे हैं, और वैसे वे हैं नहीं, वो तो प्रकट सुखदेव गोस्वामी जैसे कहते हैं वैसा है, सांवला शरीर है, हाथी दांत लिए हैं, बस तो वही उनका स्वरूप है वहां, लेकिन लोगों को अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान वास्तव में एक। इसलिए सब मिला करके यह निर्णय निकालना चाहिए कि अपने हृदय को भगवान को पकड़ने के योग्य बनाना चाहिए। भगवान का रूप है सब जगह, लेकिन वो जब हृदय का स्क्रीन खराब है, मान लीजिए किसी के टीवी का स्क्रीन खराब है, चाहे टीवी ही ब्रोकन है, काम नहीं कर रहा है, तो सर्वत्र रूप होते हुए भी वो कैच नहीं कर सकता। आप इस घर में हजारों टीवी रख दीजिए तो प्रत्येक स्क्रीन पर वो रूप दिखाई देगा, कहां का रूप, जो सर्वव्यापक है, कहीं से ट्रांसमिटेड हो रहा है लेकिन है सब जगह, परंतु बिना टीवी की सहायता को दिखाई नहीं पड़ सकता। कुछ लोगों की टीवी ठीक है तो स्क्रीन गायब है, हृदय में अनंत कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो नहीं आता। एक बार हम देखे थे एक आदमी टीवी चालू कर रहा था तो एक घंटा परेशान हुआ, केवल झलमल 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 आ रहा था बस, और जो असली रूप आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो इस तरह से कुछ लोगों का हृदय तो केवल झलमल झलमल झलमल, कोई रूप आता नहीं, कहते भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है। और तुम्हारा टीवी खराब है कि भगवान निराकार है। तो जैसे जिसकी टीवी थी उस रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे थे। किसी को बहुत भयावह, किसी को परम सुंदर, किसी को परम तत्व के रूप में, किसी को बच्चे के रूप में, किसी को कामदेव के रूप में, इस तरह से भगवान दिखाई दे रहे थे। तो भगवान को समझने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। अभी से भक्ति योग करके अपने को उसके योग्य बनाना चाहिए। जैसे रेडियो है, रेडियो आवाज को पकड़ लेता है, टेलीविजन रूप को पकड़ लेता है, उसी तरह से यदि हम सक्षम होंगे तो भगवान को पकड़ लेंगे। भगवान सुलभ है वास्तव में, लेकिन अपने ओर से कमी हो रही है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कंस की रंगशाला में विदितः साग्रज, भिन्न भिन्न चेतना वाले लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीत हुए, विदित हुए। अब आगे की कथा सुनिए। हतम कुबलया पीड़म दृष्ट्वा तावपि दुर्जयौ कंसो मनस व्यपित दा भृशम उद्विजे नृप। जब हाथी दांत देखा कंस तो समझ गया कि कुबलया पीड़ मारा गया, और कुछ लोग हल्ला भी कर रहे थे, वो लड़का कुबलया पीड़ को मार दिया, कुबलया पीड़ को मार दिया, तो कंस कुछ देर के बाद वो रंग मंच से उतर कर देखने गया मरे हुए हाथी को, तो उसके साथ सब मिनिस्टर गायक सब लोग लगभग उससे स्टेडियम में जितने लोग थे फिर चले गए देखने के लिए, मरे हुए हाथी को देखने के लिए तमाशा हो गया। और कौन मारा है? तो वो वसुदेव का छोटा सा बेटा मारा है, ऐसा लोग कहते थे। वो नंद महाराज का लड़का कृष्ण वहां करके मार दिया है, और हाथ से कोई डंडा से या कोई हथियार से राइफल से नहीं मारा है, हाथ से ही सूंड है पूछ पकड़ करके मार दिया, ये अद्भुत बात। तो सब लोग देखने गए, एक बार सभा अस्त व्यस्त हो गई, अब जाकर के देख करके सब लोग आए, अब सब कृष्ण कथा करने लगे, दूसरी बात नहीं केवल उस लड़के के विषय में ही बातचीत अब हो रही थी। सब जिसके मन में ये हो रहा था अरे अद्भुत था, वो पूछ पकड़ा था मैं देखा था, ऐसे मारा वैसे मारा, वो तो गिर गया था, वो हाथी मारने वाला था लेकिन उठकर भाग गया, उसके चारों चरणों के बीच में छिपा था, ऐसे देखा वैसे देखा, बस वही कुबलिया पेड़ बध की कथा चलने लगी। हम लोग तो पढ़ करके कथा कहते हैं, वो लोग तो डायरेक्ट देख करके कह रहे थे। कितनी अच्छी कथा वे कहते होंगे भगवान की लीलाओं की। उस स्टेडियम में केवल कृष्ण कथा होने लगी। हतम कुबलया पीड़म, जब कंस देखा हाथी को मरा हुआ और यह भी समझ गया कि कृष्ण बलराम दुर्जय है, तो कंस वीर होते हुए भी बहुत डरने लगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर कृष्ण बलराम विजयी होते हुए आ रहे थे सब जगह। अगर धनुष तोड़े, रक्षकों को मारे और रंगशाला के गेट पर हाथी को मार डाले, तो अब भय बढ़ने लगा है कि लगता है कि रिजल्ट इनके हाथ में जाएगा। ऐसा उसको भय हो गया। और दोनों भाई उस रंगशाला में जाकर के सीधे बैठ नहीं गए किसी आसन पर, विविध गैलरी थी, रास्ते बनाए गए थे, तो घूमने लगे। वास्तव में भगवान उस सभा में बैठे हुए लोगों को अपने दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ कर रहे थे, चाहे किसी भी भाव से वो देखे हो, देख रहे थे भगवान को, तो सबके पास ही भगवान जा रहे थे। ऐसा सौभाग्य कि भगवान ऐसे सामने गुजर रहे ऐसे बिल्कुल सब जगह घूम रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते तौ रेजतु रंग गतौ महाभुजौ, दोनों महाबलवान श्री कृष्ण और बलराम जिनकी सुंदर सुंदर भुजाएं थी, रंग गतौ रेजतु, उस रंगशाला में वे बहुत सुंदर लग रहे थे। विचित्र वेशा भरण स्रगंबर, विचित्र वेश था और माला लगाए थे, विचित्र वस्त्र पहने थे, जथा नटौ उत्तम वेश धारण, जैसे रंग मंच पर दो अभिनेता नृत्य करने वाले नाटक करने वाले नाचते हैं, उस तरह से अपनी प्रभा से सबके नेत्रों को और मन को अपनी ओर खींचते हुए आकर्षित करते हुए दोनों भाई घूमने लगे। तो उनको देखकर मथुरा नगर के और उस राष्ट्र के जितने लोग आए थे सब आपस में कृष्ण के विषय में ही बात करने लगे। निरीक्षतौ उत्तम पुरुषौ जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणाननः पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम्। तो जितने भी नागर और राष्ट्र का, नागर मतलब नगर के लोग, मथुरा के लोग आए थे और दूर देश में फैले हुए लोग उस यज्ञ में आए थे, वे सब श्री कृष्ण और बलराम को देखकर प्रहर्ष वेगोत कलिते क्षणाना, अतिशय आनंद के कारण उनकी आंखें खिल गईं और मुख बिल्कुल प्रसन्न हो गया, और नयनों से तद आननम पपुः, अपने नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम के मुख को पीने लगे। देखने लगे सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, ये आंख से देखा जाता है ना, लेकिन वे कहते हैं नहीं नहीं तद आननम पपु, नेत्रों से श्री कृष्ण के मुखार विंद को पीने लगे। इसका अर्थ है अतिशय आसक्ति से देखने लगे। ऐसे भगवान सर्वांग सुंदर है, लेकिन उसने जो उनका मुख है वो तो और सुंदर है, और सुंदर। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि इस विभु का, इस लीला विलासी श्री कृष्ण का सर्वांग ही बहुत मधुर है, वपु मधुर है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, लेकिन उसमें भी बदन मुख जो कृष्ण का है वो तो मधुरम 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 तीन बार कह रहा है, मधुरम मधुरम सारे शरीर के लिए, मधुरम 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 बदन के लिए, और फिर कहते हैं मृदुगंधि मृदुस्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम। और उसमें जो श्री कृष्ण की मुस्कान है, उनका जो अधर है और उस अधर पर जो मुस्कान है वो तो मधुरम 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 चार बार कह रहे, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, मृदुगंधि मृदुस्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम। इस तरह जिन लोगों ने नेत्रों से साक्षात भगवान के सौंदर्य को देखा उस रंगशाला में, वास्तव में कोटि कोटि जन्मों तक बहुत सुकृत किए होंगे, तब तो भगवान इतना निकट से दिखाई दिए। पपुस तदाननम तत् आननम, भगवान के मुंह को पी रहे थे। ऐसा लगता है वर्णन से कोई जा जाकर के भगवान को चूम रहा होगा, तभी तो पीने का वर्णन किया गया। यहां पीने का मतलब अतिशय आसक्ति से देखना, इतना सुंदर भगवान है कि उस सभा में बैठे हुए लोग आंख से पी गए देख रहे थे। दर्शन के जगह पर पान के वो कह रहे हैं, विचारणीय बात है ना। देखना कहते कि देखने लगे, लेकिन यह क्रिया देखना यहां सुटेबल नहीं है। लोग इतना तन्मयता से देख रहे थे, इतना तन्मयता से देख रहे थे कि उनकी आंखों की पलक गिरनी बंद हो गई, और इस कारण से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो देख नहीं रहे थे, वो पी रहे थे साक्षात पपु पीने लगे, और पी करके वाणी से उनका वर्णन करने लगे। यही तो वास्तव में प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उनका दर्शन करना और उनके बारे में बोलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतने पर भी सुखदेव गोस्वामी को संतोष नहीं हो रहा है, उस दृश्य को देख करके मन ही मन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पिबंतैव चक्षुर्भ्याम लिहंतैव जिह्वया। ऐसा लगता था कि उस सभा में बैठे हुए सब लोग चक्षुर्भ्याम पिबंतैव आंखों से श्री कृष्ण को पी रहे हैं, उनके सौंदर्य सुधा को पी रहे हैं, आंख से आंखों में पीने जैसा भाव आ रहा था। चक्षुर्भ्याम पिबंतैव जिह्वया लिहंतैव, और लगता था कि वो लोग जीभ से श्री कृष्ण को चाट रहे थे, तो जिह्वा में ऐसी वासना हो रही थी कि श्री कृष्ण के चरण को या हाथ को या ओठों को चाट ले चूम ले, ऐसी भावना हो रही थी। क्यों नहीं भावना हो, वास्तव में भगवान सच्चिदानंद घन है और जीव नित्य ही उनका दास है, उसी रूप के साथ जीव का संबंध है। तो आज इंद्रियों में स्फुरणा हो रही थी, आंखें लगता था कि पी रही हैं और जिह्वा चाट रही है, जिघ्रंत एव नासाभ्याम, और ऐसा लगता था कि सबकी नासिका भगवान के अंग गंध को सूंघ रही, और श्लिष्यंत एव बाहुभिः, बाहों में ऐसा उन्मेष हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस सभा में बैठे लोगों की बाहें ऐसी हो रही थी कि लगता था कि कृष्ण को आलिंगन में ले रहे, श्लिष्यंत आश्लेष आलिंगन कर रहे। इस तरह से इंद्रियों में उन्मेष हो रहा था, स्फुरणा हो रही थी। तो आंखों से पीने जैसा, जिह्वा से चाटने जैसा, नासिका से सूंघने जैसा और बाहों से आलिंगन जैसा हो रहा, लगता था कि सब लोग यही कर रहे हैं और कोई दूसरा विषय नहीं। हम लोग आज तक पता नहीं आंखों से कितना कितना दृश्य देखे हैं, कुछ ना समझ। लोगों का समय तो 24 घंटा में 2-3 घंटा टीवी देखने में चल जाता है। भगवान पर देखना चाहिए रोज, जबरदस्ती भी मन न लगे फिर भी देखना चाहिए, ये आंखों का फल है। और बाहों से हम पता नहीं किसकी किसकी क्या क्या सेवा किए हैं, आलिंगन किए हैं। तो कभी कभी भगवान के श्री विग्रह को पकड़ना चाहिए। मूर्तियां इसीलिए बैठाई जाती है मंदिर में, भगवान के चरण का स्पर्श होता है श्रृंगार करने में, वस्त्र धारण कराने में। भगवान का स्पर्श मिलना इस शरीर को बहुत ही अच्छा है। वास्तव में एक दिन ऐसा होता है कि साक्षात भगवान को छूने का मौका मिलता है अभी। लेकिन जो लोग शुरू से ही निराकार मान लिए हैं उनको कहां भगवान से भेंट होगी, तो प्रश्न ही नहीं। ये उपलक्षण है। यहां पर चार इंद्रियों का वर्णन किया गया है, आंख, जिह्वा, नासिका और हाथ। लेकिन इसके द्वारा और सारी इंद्रियों को भी समझ लेना चाहिए। सभी इंद्रियां कृष्णाभिमुखी थी। कहने का आशय है कि उस सभा में सबकी, सबके नेत्र, सबके कान, नाक, सब कुछ कृष्णाभिमुख थे। तो सब तन्मय थे, दूसरा कोई विचार नहीं आ रहा था, मन कहीं नहीं जा रहा था, केवल श्री कृष्ण और बलराम में केंद्रित हो गया था। इस तरह से भगवान उस सभा में सबको कृतार्थ कर रहे थे। और ऊचुः परस्परं ते वै जथा दृष्टं जथा श्रुतं तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। और ऊचुः परस्परं, देख तो रहे ही थे कृष्ण को, लेकिन अब परस्पर में केवल कृष्ण के विषय में बात करने लगे। जथा दृष्टम जथा श्रुतम, जैसा उन लोगों ने सुना था कृष्ण के विषय में, अभी अभी की लीला अथवा ब्रज की लीला। भगवान कल से ही मथुरा में लीला कर रहे हैं और आज भी किए हैं कुबलयापुर बध आदि, तो इसको जथा श्रुत कहेंगे। कुछ लोग तो जथा दृष्टम देखे थे कृष्ण की लीला को, तो जथा दृष्टम जथा श्रुतम, जैसा देखे थे और जैसा सुने थे वह कृष्ण कथा बोलने लगे परस्पर। सुन करके भी कृष्ण कथा बोली जा सकती है। और श्री कृष्ण क्यों लगे कथा कहने, परस्पर बातचीत करने आपस में, क्योंकि तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ्य स्मारित आयुआ। श्री कृष्ण के रूप, गुण, माधुर्य, प्रागल्भ्य, प्रागल्भ का अर्थ विदग्धता, रसिकता आदि का उन्हें अतिशय स्मरण होने लगा कृष्ण को देख करके। इतना स्मरण सुन करके नहीं होता था जितना देख करके हुआ। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को रोज देखे, देखने से ही उनमें मति लगेगी। ऐसे सुनना मुख्य साधन है, परंतु जब हम भगवान को देखते हैं तो देखने से ही भाव उत्पन्न होता है। इसलिए एक टीकाकार श्री हरिश्वर जी भक्ति रसायनम में कहते हैं,
कीर्ति दिव्यति गोपते रविरता यद्य पघग्नि तथा यस्मिन् स्मृति कृत भवत्य विकलम तन्मूर्ति संदर्शनम जानन्तोपि जनः पुरापि जदुपं दृष्टैव जत् प्रास्तुमा तस्मात् तत् प्रतिमावलोकन महोरात्रं विधेयं बुधये। यद्यपि श्री कृष्ण की कीर्ति संपूर्ण जगत में विद्यमान है और केवल कीर्ति सुनने से, बोलने से जनता के समस्त पाप का विनाश हो जाता है, फिर भी श्री कृष्ण की विशेष स्मृति होती है तन्मूर्ति समदर्शनात्, जब श्री कृष्ण को हम देखते हैं। मूर्ति समदर्शनात् यदि भगवान के विग्रह को ध्यान से देखा जाए नख से सिख तक, तो उससे उनके प्रति भाव होता है, उनका विशेष स्मरण होता है। इसका प्रमाण मथुरा में जानम तोपि जनः पुरापि जदुपम। जदुपम जादुओं का पालन करने वाले भगवान को पहले से ही मथुरा के लोग जानते थे, जानन्ते अपि, किंतु देखने के बाद ही श्री कृष्ण का भी वर्णन करने लगे और भाव उत्पन्न हो गया सबका। देखने के बाद एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ और वर्णन करने लगे। तस्मात इसलिए तत्प्रतिमावलोकनम अहोरात्रम विधेयम बुधय। अतः विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे भगवान के प्रतिमा का अवलोकन रात दिन किया करें, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया करें रात दिन। मथुरा के लोग पहले से ही भगवान को जानते थे, सब सुने थे कथा, लेकिन देखने के बाद बहुत वर्णन करने लगे। जैसे मान लीजिए कोई सुनते थे कि कृष्ण नामक एक लड़का बहुत सुंदर है ब्रज में, और तब अधिक कृष्ण भावना उत्पन्न हुई। यही कारण है कि आचार्यों ने मंदिर बना बना करके जगह जगह भगवान को स्थापित किया है। अपने घर का मोह छोड़कर, आराम छोड़ करके आकर के भगवान को देखना चाहिए, तथा अपने घर में भी भगवान को रखना चाहिए, वहां भी देखना चाहिए। और तत्वतः विचार कीजिए, हम लोग यदि कैलकुलेशन करें कि हम भगवान को कितने देखते हैं, तो 100% में 1% भी टाइम नहीं देखते हैं भगवान को, है ना? कई कई घंटा जाप करते हैं, काम करते हैं, इधर रोड पर रहते हैं। कितने लोग तो गाड़ी चलाने में, कार चलाने में 2-3 घंटा रोड पर ही रोज रहते होंगे, तो सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान के सामने कितना खड़ा रहते हैं, कितनी देर, ये भी तो कैलकुलेशन करना चाहिए। सब जोड़ा जाएगा, मरने पर सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा कि क्या कितना देर भगवान के सामने खड़ा रहा है और कितना देर इधर उधर गलत जगह पर खड़ा रहा, क्या क्या देखा। तो अपना परसेंटेज भगवत दर्शन का बढ़ाना चाहिए, देखना। और देखने की एक विधि है कि भगवान की लीलाओं का भी स्मरण करना चाहिए, और देखने में यदि मन को अभिनिवेश करना चाहते हैं तो उसका उपाय है भगवान के श्रृंगार मुस्कान आदि को देखना। नख से चालू करें, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, सिख तक बांसुरी आदि देखें, और फिर ऊपर से नीचे, इस तरह से बारंबार बदलते रहने से मन टिक जाएगा। नहीं तो ऐसे आंखें रहेंगी और मन भाग जाएगा दूसरी जगह। कुछ भी हो, मन इधर उधर भागे फिर भी आंखों को खोले रखना चाहिए, धीरे धीरे मन आ जाता है। और मन में भगवान को जिस तरह से देखा जाता है, ध्यान जिसको कहते हैं, तो ठीक वैसे ही आंखों से देखना है, बल्कि आंख से देखना उससे बेहतर माना है। भगवान सामने दिखाई देते हैं, इसलिए यहां लिखा गया बुधई ही तत्प्रतिमा व लोकनम अहोरात्रम विधेयम। रात दिन भगवान को देखना चाहिए, यही वास्तव में ज्ञान है, यही भक्ति है, यही धर्म है। हम लोग मनुष्य शरीर पाए हैं तो भगवान को समझने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए, तो उनके प्रतिमा का अवलोकन, उनकी कथाओं का श्रवण, उनके नाम का संकीर्तन, उनके प्रेमियों का, भक्तों का संग और उनकी सेवा, इस तरह से यदि हम लगे रहे तो निश्चित भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कई कई उपाय हैं भगवान में प्रेम बढ़ाने के, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इनमें 5 प्रधान हैं। एक है मथुरावास, ब्रजवास, और दूसरा नाम संकीर्तन, तीसरा है वैष्णवों का संग,
सजातीय वैष्णवों का संग अपने पथ पर जो चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के भक्त उनका संग, उनके संग में श्रवण कीर्तन, तथा चौथा है श्रीमद् भागवतम के अर्थों का आस्वादन। सिंपली कथा श्रवण नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवतार्थास्वाद, भागवत अर्थ आस्वाद, भागवत के अर्थ का आस्वादन करना, अर्थात व्याख्या पूर्वक श्रीमद् भागवत को सुनना पढ़ना। और पांचवा है श्रद्धा से श्री विग्रह की सेवा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 64 प्रकार की भक्ति बताया और उसमें से पांच को कहा ये प्रधान है, और इसमें से एक को भी कोई करता है तो अवश्य कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। पांचों करे तब तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इनमें से एक का भी थोड़ा भी आचरण करने पर कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और फिर पांचों यदि कोई करे श्रद्धा से तब तो निश्चित ही कहना ही नहीं है एक प्रेम उत्पत्ति के विषय में। तो इस प्रकार मथुरा के उस रंगशाला में भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो लोग बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण को देखने के बाद ही ऐसा भाव उमड़ा, इसके पहले वे इतना अभिनिविष्ट नहीं थे। इसलिए कथा श्रवण के साथ साथ भगवान के श्री विग्रह का दर्शन अवश्य करते रहना चाहिए। मंदिर में और अपने घर में भी, अपने सभी घरों में जित देखो तो श्याममयी है, भगवान का फोटो टांग देना चाहिए। जिधर दृष्टि पड़े उधर भगवान, जित देखो तो श्याममयी, जहां देखती हूं वहां श्याम दिखाई देता है, गोपियां कहती हैं उद्धव जी से। एक पद में कहा गया है गोपियां लास्ट में उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहां रखे यहां रोम रोम श्याम है। योग कहां रखे यहां तो रोम रोम में श्याम है, जगह ही नहीं है योग रखने की। अरे तो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाना है, धारण करना है। आपस में श्री कृष्ण के विषय में लोग क्या बातें कर रहे हैं सुनिए। एतौ भगवतः साक्षात् हरिर्नारायणस्य हि अवतीर्णौ विहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि। लोग परस्पर कहते हैं जानते हो ये कौन है ये दोनों? ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। और वसुदेव जी के घर में अपने अंशों के साथ जन्म लिए। वे ये नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण ही मूल नारायण है। बेचारे कृष्ण की महिमा को बढ़ाकर कह रहे हैं कि भगवान नारायण के दोनों अंश हैं, कुछ भी कहे ठीक लगता है। वास्तव में भगवान, उनके कहने का आशय है कि यह कोई मनुष्य नहीं है, दोनों कृष्ण और बलराम ये भगवान हैं। उनके तेज प्रभाव सौंदर्य और बल आदि को देख करके कहते हैं ये भगवान हैं, मनुष्य नहीं है। ये कृष्ण कथा चल रही है। कभी कभी श्री कृष्ण के सामने ही उनकी कथाएं चलती थी। यहां तो सब लोग मान रहे हैं कि ये भगवान हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के राजसीय जग में जब यह कहा जा रहा था कि कृष्ण भगवान हैं, ये हैं वो हैं, तो शिष्यपाल उठकर गाली देने लगा। वहीं पर भगवान की अग्र पूजा हुई, सब लोग जय जयकार कर रहे थे और उसको सहन नहीं हुआ, वो गाली देने लगा। महाभारत में एक कथा है, वो कहता है निश्चित ही काल बलवान, समझ गया काल कितना बलवान है। काल ने आज इस सभा में बैठे हुए बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को भी नष्ट कर दिया। बताइए एक गोप की प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि भरे पड़े हैं, उनकी प्रशंसा न करके गाय चराने वाले की प्रशंसा हो। ये नाचता था, खाता था, ये दही माखन चुराने वाला क्या कहा है? काल बलवान। और भीष्म पितामह को इतना गाली दिया हो शिशुपाल। सहदेव ने कहा कि कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, तो भीष्म पितामह सबसे पहले सपोर्ट किया, हाँ 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 ठीक। इस पर कहता है ये बूढ़ा शरीर वृद्ध होने के कारण इसकी बुद्धि भी वृद्ध हो गई। 400 वर्ष के थे भीष्म पितामह उस समय। ये अपने को ब्रह्मचारी समझता है, काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण किया था, देखिए ब्रह्मचारी है बैठा है सभा ऐसा, इसको शर्म नहीं आई। कहता है कि हाँ सहदेव ठीक कह रहा है, यही कृष्ण पूजा करने लायक है। पूजा करने लायक नहीं है, हम तो कहते हैं कि इसी भीष्म की ही पूजा करो सबसे पहले, यही बड़ा है। वही तरह से कह रहा है, नारद जी बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कई गाली दिया और कहा कि हमारा विवाह निश्चित किया गया था रुक्मिणी से, मैं दुल्हा बनकर गया था और हमारी पत्नी को ये ले गया अपहरण कर, और उस व्यक्ति की यहां पूजा हो रही है ब्रह्मर्षि और राजर्षि और देवताओं के समाज में। वाह रे समय, समय बलवान। पूछिए इससे कि हमारा विवाह तय हुआ था कि इसका। भगवान ने थोड़ा सा प्रतिवाद किए हैं वहां पर, कहते हैं भगवान तुम्हें शर्म नहीं आती है कि जो लड़की तुमको नहीं चाहती थी और तुम उसके पीछे पड़े थे? तो वो कहता है छी छी, अरे वो चर्चा क्यों करते हो, बंद करो बंद करो, सब लोग तुम्हारा कर्म जानते हैं तुम जैसा हो, तुम अपने मामा को मारे हो, कंस को मारे हो। लेकिन ये नहीं कहा कि मामा कैसे थे जो अपने कितने भांजा को मारे थे। ये नहीं कहा। बहुत प्रकार से भगवान को गाली दिया, लेकिन वह सब सहते गए। इस तरह से पुरुष को धीर होना चाहिए। उसी सभा में श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रशंसा हो रही थी, ऋषि मुनि सब कर रहे थे और एक आदमी उसके गाली देने लगे। भगवान दोनों में सम, पर मथुरा में सब लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं, यहां प्रकट विरोध नहीं है, भीतर भीतर कंस योजना बनाया था कृष्ण को मारने का, लेकिन बाहर से तो स्वागत कर रहा है, वेलकम वेलकम, आई आई बहुत स्वागत। और मारने के लिए जग किया था, मारने के लिए बंगल का उत्सव रखा था, मारने के लिए कुबड़ा पीड़ को खड़ा किया था, सब मारने के लिए। लेकिन बाहर से ऐसा था कि राजा अपने प्रजा को बुलाया है खिलाने के लिए पिलाने के लिए, उत्सव कर रहा है, इसलिए प्रजा का कर्तव्य है अपनी अपनी कला प्रदर्शन करना। तो लोग बात कर रहे थे कि ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण के दोनों अंश हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा कहां पर ये अवतार लिए हैं, तो वसुदेवस्य सद्मनि वेश्मनि, वसुदेव के घर में इनका जन्म हुआ है। वो ये मथुरा वाले वसुदेव, हाँ हाँ इनके यहां जन्म हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं हम सुने कि नंदगांव से आया है, ये नंद महाराज का लड़का है। आपस में बातचीत कर रहे हैं तब कहते हैं रहस्य जानने वाले, एस वही किल देव क्या जातो नीतश्च गोकुलम, ये लड़का देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था कंस के कारागृह में, लेकिन रात में अपने पिता के द्वारा गोकुलम नीत गोकुल पहुंचाया गया है। ये सब बात खुल चुकी है। वास्तविक बात है नारद जी ने आकर सब खोल दिया था। कृष्ण बलराम को बुलाने के पहले में कंस से कह दिए कि तुम जानते हो तुम्हारे साथ कितना दगा किया है, छल किया है वसुदेव, उसका आठवां जब पुत्र हुआ तो उसको जमुना पार गोकुल पहुंचाया आया था और तुमको नंद की लड़की को दिखा रहा था। और इतना सुनते ही कंस तो क्रोध में पागल हो गए, वो तुरंत पुलिस भेजा वसुदेव जी को बुलाने के लिए, बुलाओ बुलाओ अभी तलवार से काटेंगे। और नारद जी वहीं थे, तो मना नहीं किए नारद जी, वसुदेव को बुलाया गया, हाजिर किया गया, और कंस पूछता है अरे झूठा असत्यवादी नीच, तुम अपने आठवें पुत्र को गोकुल पहुंचाए हो, उसी का नाम कृष्ण है ना। वसुदेव जी तो चुप थे, और कंस चला एक दो तीन कह करके गर्दन काटने के लिए वसुदेव जी का। तब तक नारद जी ने कहा रुको रुको कुछ सोचो रुको, तुम्हारी मृत्यु वसुदेव के हाथ से है कि उसके लड़के से, लड़के के हाथ से। यदि तुम वसुदेव का वध भी कर देते हो तो तुमको मारने वाला तो रह ही जाएगा, जो तुमको मारने वाला है उसका वध करो, इसका वध क्या करोगे। और यदि वसुदेव का वध कर दोगे तो वो लड़का सुनेगा कि हमारा बाप मारा गया तो भाग जाएगा, फिर खोजने पर भी नहीं मिलेगा, ये समाचार तो फैल जाएगा, इसलिए ये वसुदेव का वध मत करो। बेचारे इसका दोष नहीं है, सभी पुत्र के मोह में रहते हैं, वैसे ये भी हैं, इनको छोड़ो। तो समझ गए हाँ हाँ ठीक है, वसुदेव जी का वध नहीं किया। तो अक्रूर नारद जी चले गए, तो अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि हे मित्र, आप ही हमारा साथ देने वाले हैं, हमारी मृत्यु कृष्ण बलराम के हाथ से है, तो आप जाइए रथ लेकर के, यहां मैं एक उत्सव का बहाना कर रहा हूं, उनको फुसला करके जैसे तैसे लाइए, इतना सुंदर रथ देखेंगे तो रथ पर चढ़ने के लिए भी वे आ जाएंगे, ले जाइए। इस तरह से वो भेजा। तो उस दिन के बाद पूरे मथुरा में ये खबर सब जगह फैल गई कि वसुदेव जी चोरी से अपने लड़के को पहुंचाए थे गोकुल, वो तो इतने वर्षों तक ये भेद नहीं खुला था, और अब खुल भी गए तो क्या होगा, और तो मारने वाला यहां आकर के घूम रहा है, आकर के बैठे भगवान फिर बलराम जी के साथ, और हाथी दांत लिए हुए बहुत सुंदर मंच पर भगवान बैठे, जहां सब लोग देख सकते थे उनको। तो लोग बात कर रहे थे कि ये जो सांवला लड़का है, इसका जन्म यही हुआ था, लेकिन इसके पिता डरते थे और ये रात में पहुंचा आए थे आधी रात, और कंस भी सुन रहा है, अब कोई बात छुपी हुई नहीं रह गई है। कंस सुन रहा है कि लोग आपस में बात करते हैं कि इसका जन्म यहां हुआ और रात में इसके पिता ने पहुंचा दिया, कहां गोकुलम कालम एकदम बसन गुड़ हो, इतने दिन तक छिप करके बड़ा हुआ, छिपा था कंस के डर से छिपा था, लेकिन आज आ गया, मरेगा निश्चित कंस, क्योंकि भगवान है, जब हाथी को मारा और धनुष को तोड़ा तो अब क्या बाकी रह गया, अब तो धनुष का तोड़ना ही लोग मान लिए कि कंस को ही मारेगा लड़का। तो कुछ लोग तो बहुत खुश थे उस समय, आनंद में थे, उनको कोई चिंता नहीं हो रही थी, और यह कहने में भी भय नहीं लगता था कि इस लड़के को आधी रात के समय पहुंचाया गया, ब्रज में 11 वर्ष तक छिप करके रहा, बढ़ा है और अब आ गया है। अब कृष्ण कथा करने में भय क्या था, भगवान आ चुके हैं। वृद्धे नंद बेसमनी, नंद महाराज के घर में बड़ा हुआ, तो जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन पहुंचा दिया गया। एस पूतना ने नीतांतम चक्रवात दानव अनेन पूतना अंतम नीता, इसी के द्वारा पूतना मारी गई। सुने हो ना कि पूतना भेजी गई थी ब्रज में, यही लड़का मारा वहां, और 6 दिन का था, लोग आपस में कथा कहते थे, छोटा सा बच्चा था और भयंकर पूतना राक्षसी को मार दिया, और चक्रवात को मारा, तृणावर्त को मारा, कई कई अर्जुनो गुह कहके सी धेनु कोन्ने च तद्विधा, दोनों अर्जुन वृक्ष गिराए गए इसी के द्वारा, शंखचूर मारा गया, धेनुकासुर मारा गया, मतलब श्री बलराम जी से अभेद करके कह रहे हैं, बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा था, इसके द्वारा इस सब मारे गए, और अन्य तद विधा, और भी इसी प्रकार के राक्षस मारे गए। ये कृष्ण कथा, इसको यहाँ थोड़े में दिया गया, लेकिन वो लोग पूरा कथा आपस में कह रहे हैं, कैसे पुतना गई, कैसे मारा, क्या किया। और गाव सपाला एते न दवाग्ने परिमोचिता, एते न इसी कृष्णे न, इसी कृष्ण के द्वारा गौए और गोप दवाग्नि से बचाए गए थे। कालिय दमित सर्प, इसके द्वारा कालिय जैसे भयानक सर्प का दमन किया गया। विमदह करता उसका, और इंद्रश्च विमदह करता, और इंद्र का अभिमान इसी लड़के ने तोड़ दिया, 7 दिन पहाड़ उठा करके। तो लोगों को बड़ी खुशी है कि ये शंका मत करो कि अब कंस बचेंगे। अब तो आज ही भर खाना दाना है कंस का, लड़का मारेगा निश्चय। और सब लोग अपने पुण्य को दाव पर लगा रहे थे कि हे भगवान शंकर जी, हे गणेश जी, हमने जो कुछ भी पुण्य किया हो उस पुण्य के प्रताप से यह बच्चा कंस का वध कर दे। और कंस सुन रहा था इन सब बातों को। इस प्रकार लोग बात कर रहे थे आपस में, दवाग्नि लीला, कालिय दमन लीला, गोवर्धन धारण लीला। फिर गोवर्धन धारण लीला को विशेष रूप से कह रहे हैं, सप्ताहमेक हस्ते न धृतोद्री प्रवरो मुना अमुना। इस बच्चे के द्वारा गोवर्धन पर्वत 7 दिन धारण किया गया है। वो क्यों, वर्ष वातासनिग्रस्त परित्रातम च गोकुलम, क्योंकि इंद्र वर्षा कर रहा था, वज्रपात कर रहा था, बहुत जोर से आंधी चला रहा था, तो उससे रक्षा करने के लिए इस लड़के ने 7 दिन तक एक हस्ते न पर्वत को धारण किया। हाथ बदले भी नहीं भगवान, ऐसा नहीं कि दर्द होने लगा बाएं हाथ में तो इधर कर लें, एक ही हाथ से धारण किया और एक पग भी इधर उधर चला नहीं, न एक दिन सोया और न खाया पिया। ऐसे भगवान खाए पिए भी नहीं, कृपा करके 7 दिन धारण किए रहे। ये सब कथाएं फैल चुकी हैं। भगवान जब थे चाहे उसके बाद भी सारे जगत में कथाएं फैली थी, लेकिन अब तो सब बुक प्रिंट करना पड़ता है, तब भी बुद्ध लोग नहीं जानते कि कृष्ण ये किए वो किए, तो पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। चाहिए भगवान की ये लीलाएं प्रतिदिन कहनी चाहिए अपने समाज में, अपने घर में, लेकिन लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं। अखबार पढ़ने की फुर्सत है रोज, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, नियम से पारायण चलता है न्यूज़पेपर का अभी सवेरे सवेरे। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण आदि नहीं। ये है कलयुग, लोगों की बुद्धि अतिशय मंद हो गई। इस प्रकार इस बच्चे ने गोकुल की रक्षा किया। गोप्यस्य नित्य मुदिता हस्त प्रक्षणम मुखम पश्यन्तो विविधांस्तापान तरन्ति स्म श्रमं मुदा। गोपियां इस लड़के का मुख रात दिन देखती रहती थी और सब प्रकार के दुख से मुक्त रहती थी। मतलब सबसे बड़ा सुख मिलता था उनको इस बच्चे को देखने में। ऐसा बदंती बदंती अनेन वंशन जदो सुबह विश्रुत, ऐसा लोग कहते हैं कि इसके कारण जदु महाराज का वंश बहुत प्रशंसित होगा, यह जदुवंश की रक्षा करेगा, जदुवंश धन्य माना जाएगा और जदुवंश को बहुत श्री मिलेगी, यश मिलेगा, महत्व मिलेगा। और ये जो गोरे गोरे एक गोरा गोरा लड़का है जो इसका अयम च अस अग्रज है, यह इसका अग्रज है, बड़ा भाई है, इसका नाम है बलराम, नामना कमल लोचन, राम कमल लोचन, इसका नाम है राम। देखो कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी, प्रलंबो निहतो जिन वत्स को ये बका दिया, इसने प्रलंब नामक राक्षस को मारा था और वत्सासुर का वध किया था। इस प्रकार से लोग बोल रहे थे और उधर बाजे बज रहे थे, सब हो रहे थे, केवल कृष्ण कथा चल रही थी। कंस के पास जो बैठे थे वे भी कृष्ण के विषय में बोल रहे थे, कंस के अपने आदमी, और सब आश्चर्यचकित, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, उधर बाजा बज रहे थे, जब बाजा बज रहे थे और लोग आपस में कृष्ण कथा कर रहे थे, तब चारूड़ जो सबसे बड़ा पहलवान था, उसने सबको रोका, बाजा बंद करो, सुनो। और इसके बाद वो कहा, हे कृष्ण और हे राम, तुम दोनों का हम लोगों के साथ दंगल होगा, मेरे साथ तुम मल्लयुद्ध करो और बलराम के साथ, और बलराम मुष्टिक के साथ। इस तरह से उसने रोका और ये प्रस्ताव चालू हुआ। अब इन सबके मरने का समय आ गया। इस कथा को मैं कल कहूंगा, आज मैं पूरा करता हूं, 8:30 में जाना है। यदि जाने लायक काम तो नहीं कि अब कथा में बहुत लेट आए। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जिनको बहुत देर तक फर्श पर बैठने का अभ्यास न हो तो बीच में कुर्सी पर बैठ सकते हैं। यहाँ 5 दिन से कथा का क्रम चल रहा है, आज 6th दिन है। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम मथुरा में विविध लीला किए हैं, उन लीलाओं में से कुछ का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। हम लोग वहां तक पहुंच गए जब भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ रंग भूमि में, रंगशाला में प्रवेश किए और भिन्न भिन्न चेतना वाले लोग भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार से देखे। और इसके बाद कृष्ण बलराम के अद्भुत सौंदर्य, तेज और प्रभाव को देखकर वे सब आपस में जिज्ञासा करने लगे कौन है, तो परस्पर वर्णन करने लगे कि ये भगवान के अंश हैं और इस प्रकार इनका जन्म मथुरा में हुआ और इनके पिता गोकुल पहुंचाए। इस प्रकार अनेक लीलाएं वे आपस में कह सुन रहे थे और तब बाजे बजने लगे। इसके बाद जिस प्रयोजन से वह रंगशाला सजाई गई थी, वह प्रस्ताव चारूण बोला, इसको कम करना चाहिए, कम इतना हाव हाव की क्या जरूरत, सुनाई पड़ना चाहिए बस इतनी आवाज रख। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। तो चारूण है जो कंस के द्वारा नियुक्त पांच पहलवानों में सबसे श्रेष्ठ था, बलवान था, उसने कहा हे नंद सुनो हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ नियूध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हूतौ दिदृक्षुणा। हे नंद सुनो, हे नंद के पुत्र, और हे राम भवन्तौ, आप दोनों वीर सम्मतौ, वीरों के द्वारा सम्मानित हैं, आप दोनों की प्रशंसा बड़े बड़े वीर लोग करते हैं, और नियुद्ध कुशल, आप दोनों नियुद्ध में, मल्ल युद्ध में, दंगल में बहुत कुशल हो, ऐसी बात सब जगह प्रसिद्ध हो चुकी है। तुम लोग दोनों पहलवान हो और पहलवानी में तुम्हारा नाम सब जगह फैला है। इति श्रुत्वा, इसी को सुनकर, राज्ञा हूतौ, राजा के द्वारा तुम बुलाए गए हो दोनों। देखिए इसका कपट, पॉलिटिक्स खेल रहा है। बोलने में नंद सुनो कह रहा है, हे नंद पुत्र, और जानता है कि वसुदेव का पुत्र है, लेकिन भेद जानने के बाद भी यह सोचता है कि हम क्यों खोले। अगर ये कपट कर रहा है लड़का, अपने को नंद पुत्र कहता है, तो हम भी सभा में इसको नंद पुत्र ही कहें। लेकिन चारुण जानता था कि वसुदेव का पुत्र है, पर कृष्ण अपने को नंद के पुत्र रूप में ख्यात किए थे, इसीलिए चलो उनकी ही इच्छा रखते हुए बोल रहा था सभा में, लेकिन कपट कर रहा था। तुम दोनों की पहलवानी की प्रशंसा सुनकर राजा कंस ने तुम दोनों को बुलाया है। दिदृक्षुणा, राजा तुम दोनों को देखना चाहते थे, क्योंकि भाई तुम लोग भी राजा कंस की प्रजा हो, तो प्रजा के पास यदि कोई विशेषता हो, कला हो, तो उस कला का प्रदर्शन राजा को करना चाहिए। यदि राजा प्रसन्न होता है तो प्रसन्न करने वाले को बहुत बड़ा पुरस्कार देता है। बताइए, इसने कब सुन लिया कि दोनों मल्ल युद्ध में बहुत प्रवीण है? छोटे छोटे बच्चे और कहता है कि तुम लोग पहलवानी में विश्व विख्यात हो गए हो, और इसीलिए राजा कंस ने तुम लोगों को बुलाया। राजा कंस कृष्ण बलराम का वध करने के लिए बुलाया था, वह नियुद्ध देखने के लिए नहीं, परंतु सब सिखाए गए थे, कंस के द्वारा पढ़ाए गए थे कि ऐसे बोलना, ऐसे करना, जिससे कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और जब तैयार हो जाए तो बीच में ऐसे मर्म स्थान में, छाती में, जहां तहां मार देना कि मर जाए। तो कंस सिखाया था उन लोगों को, लेकिन ये कह रहा है कि राजा तुम लोगों को देखने के बड़े अभिलाषी थे, और इसीलिए मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं, अतः प्रियम राज्य प्रकुर्वन्त्य श्रेयो विन्यन्ति वही प्रजा। जो प्रजा राज्य प्रियम कुर्वन्ति, जो राजा का प्रिय करते हैं, जो प्रजा राजा का प्रिय करती है, वह श्रेयो विन्दन्ति, उसका कल्याण होता है। मनसा कर्मणा वाचा, प्रजा को चाहिए कि अपने मन से, वचन से और शरीर से राजा का प्रिय करे। विपरीतम अतोन्यत, लेकिन यदि राजा के विरुद्ध कोई करता है तो फिर उल्टा फल मिलता है, फिर राजा उसे अरेस्ट करता है, मारता है, फांसी पर चढ़ा देता है। इसलिए प्रजा के लिए राजा ही भगवान है, ऐसा समझकर तुम लोगों के पास जो भी मानसिक, वाचिक या शारीरिक विशेषता है, अपने राजा कंस की प्रसन्नता के लिए उसको दिखाओ। फिर विशेषता कहता नित्यम प्रमुदिता गोपा वत्स पाला जथा स्फुटम। मानो कृष्ण ने यह कहा कि हम कब पहलवानी किए हैं, हमको कैसे बहुत बड़ा पहलवान कह रहे हो। तो कहता है नित्यम प्रमुदिता गोपा, गाय चराने वाले नित्य प्रसन्न रहते हैं, कोई चिंता होती नहीं है। ये पहलवान कह रहे हैं नित्यम प्रमुदिता प्रकर्षण मुदिता गोपा। मैं जानता हूं गोपगण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वत्सपाला जथा स्फुट, जैसे बछड़ा चराने वाले, यह स्फुटम कोई छिपी हुई बात नहीं है, प्रकट है। बनेशु मल्ल युद्ध न कृणंतश्चारयंती गा, गाय चराने वाले लोग वन में मल्ल क्रीड़ा भी करते रहते हैं, गाय चराते रहते हैं। नित्य वास्तव में यह बात है, बच्चे कभी कभी कुश्ती करते हैं और फिर गाय चराते हैं। तो तुम लोग भी बहुत अभ्यास किए हो।